कानून में नहीं लगाया, ये वो है नहीं इसमें चिपकाने वाला। आज पांचवा अध्याय करने का प्रयास करेंगे, पूरा हो जाए। परमपिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना करते हुए मंत्र पाठ करेंगे। ओम या मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अत्र भवतां सर्वेषाम् एकदा पुनः स्वागतम्। अस्माभिः ह्यः चर्चा चर्चिता कस्मिन् विषये? चंद्रगुप्त महोदय, पुष्कर है कस्मात? वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, कान में लगाना पड़ेगा। वो काम है हेडफोन है। पूजा कर्म, पूजा कर्म अस्य को अर्थ है? पूजा नमस्कार है तो पौराणिक अस्मात् अधिकं कुर्वन्ति। पुष्करम अंतरिक्षम भवति पोषति भूतानि, कथम अंतरिक्ष भूतानि पोषति इति उच्यताम। ओहो विक्रम जी आगे हिंदी में बात कर लेते हैं। कहना पड़ेगा बार बार ताकि आपको चोट लगे और आप संस्कृत समझे। हाँ पोषति भूतानि कैसे? अच्छा मतलब वर्षा में मेंढक गिरते हैं, सूर्य की रश्मियां मेंढक बनाती हैं ऊपर, ऐसा है राजेश जी? ऐसा है मेंढक गिरते हैं ऊपर से, मछलियां भी गिरती हैं,
प्रत्यक्ष देखा है, सांप भी गिरते हैं छोटे छोटे।
कैलिफोर्निया में एक बार भी बारिश
है,
कैलिफोर्निया में कोई मेंढकों की बारिश
नहीं, तो फिर तो हो गया कि और ये कैसे संभव है?
अंडे होते ना पानी साथ ऊपर ज़्यादा बारिश
होती है। अभी इस विषय में कहा नहीं जा सकता, पर अंतरिक्षम पोष्टि भूतानि भूतों को तो ये ही पुष्ट कर रहा है वर्षा के माध्यम से, रश्मियों के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से, इतना तो है। पर मेंढक ऊपर से गिरते नहीं गिरते अभी इसमें निर्णय नहीं है। हो सकता है कि वो मेंढक जो है पहले से यहाँ पानी जैसे घास फूस के बीज पहले से पड़े हुए थे और जैसे ही वर्षा हुई तो हरे हो गए। हाँ अब की बार प्रयोग किया जाएगा, बड़े बड़े टप रख दिए जाएंगे और जब देखें सब जगह नहीं गिरते। तो इसका मतलब कुछ संशय, तालाब और नदी के पास गिरते हैं तो इसका क्या कारण हो? पहले से वहाँ है क्यों कश्यप जी? ऐसा कभी देखा कि ऊपर से मेंढक और मछली गिरती हूँ बरसात में?
सुना है,
कई बार पश्चन अपि न पश्यति, पश्चन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसे नहीं कह सकते कि आपने देखा हो, आपकी दृष्टि पहले से मन में संस्कार है कि मेंढक गिरे और आपको ऐसे ही दिख गया कि मेंढक गिरा। चलो विचार नहीं है अभी, इतना है कि अंतरिक्ष भूतों को पुष्करम एतस्मादेव एतदपि पुष्करम ये तस्मादेव के हेतु ना वपुष्करम भवती, वपुष्करम नाम है वो वपुष्कर जो है वो कौन है, कमल है, पुष्करम नाम है, स्थान विशेष नहीं है वहाँ, वो तो क्योंकि हम पुष्कर के पास बैठे हैं इसलिए व्याख्या कर दी गई थी, बाकी पुष्करम वपुष्करम नाम है कमल, बहुत पुष्ट होता है शरीर के लिए,
कमल
नीला कमल
सारे ही होते हैं, नीले में थोड़ी दिव्य ऊर्जाएं हैं। तो एक शब्द आया था हरियाणे, हरियाणे
रजतम हरियाणा,
तो रजतम हरियाणे इसका क्या अर्थ है चंद्रगुप्त जी, यानी यानी वो हरियाणा है। अच्छा हरियाणा देखो वेद में आया है, क्यों जुआ वेद में नहीं आया पर हरियाणा तो आया है। अच्छा तो इसमें देखें कि हरियाणा का अर्थ है, यहीं से शब्द लिया, हरणशील यानम यस्य तस्मिन् हरियाणे रजतम वर्तते, अर्थात जो हरण शत्रुओं के प्राणों को हरण करने वाला जो विमान है वो चांदी का बना होना चाहिए, ये कह रहे हैं क्योंकि वो नष्ट नहीं होता। देखिए केवल कुछ भी नहीं होता, ब्राह्मण ग्राम पंच तो तत्र भवन्ति के नापित है, कुंभकार है, अयस्कार है और तक्षक, ये पांच तो होते ही हैं। आप कहो कि पंडितों का गांव है तो पांच तो यहाँ तब भी होंगे, भाष्यकार ने कहा। तो छत्रिना यान्ति इसका क्या अर्थ है, बहुल अर्थ में है कि भाई जिनके अब 10-20 छाता लेके जा रहे हैं, 20 लोग वैसे जा रहे हैं तो क्या कहेंगे आप कि छाते वाले, तो बहुल अर्थ में है। चांदी की उसमें मुख्यता होगी, पहिए चांदी के नहीं होंगे, चांदी की मुख्यता होगी उसमें, सीट वीट बढ़िया चांदी की होगी और ये सारे देखना चाहिए चांदी का विमान वैसे। और अब आगे देखें, इसमें जो आगे आ रहा है वो है निचुम पुणा। अब ये निचुम पुणा क्या है कि चमु छमु अदने, और उसी को चम को क्या हो गया, ये हो गया निचुम हो गया, और तत्र निचुम पुणा नान भक्षणे न चमने न पुनातीति निचुम पुणा, जो खाने के बाद पवित्र होता है या खाते समय जो पवित्र किया जाता है या करता है उसी को कह रहे हैं निचुम पुणे। कौन है, सोम। सोम जो है ये पवित्र वस्तु है और शरीर में भी पवित्रता देता है, और ये क्या है निचांत प्रिण है, निचांत वही कर दिया, निचुम का क्या अर्थ क्या निचांत, चमु छमु अदने, निचांत नाम है, निचांत न प्रिण प्रिणाती थी निचांत प्रिण, जो खाने के साथ में ही पवित्रता पैदा कर देता है, और पचने के बाद तो 40 दिन में करेगा, ध्यान देने की बात है। कोई भी जो चीज हम खाते हैं अधिकतर जो स्थूल भोजन है, इसलिए दुग्ध का जो है ना वो 40 दिन में नहीं बनता, वो जल्दी बन जाता है, सद्यो बल कारक है। रोटी वोटी जो आप खाते हैं इनका जो मूल तत्व मिलेगा वो गंदगी तो 2-3 दिन में मिल जाएगी, पर जो मूल तत्व मिलेगा वो 40 दिन लगेंगे। इसलिए क्यों अल्प आहार की बात की जाती है, क्यों सद्य पाचक की जाती है, कि उसको उसी काल में वो असर दिखा देता है। और ये जितने भी भारी भोजन है, पूरी कचौरी विशेष भोजन आदि हैं, ये आदि शक्ति को खा के आदि शक्ति भी नहीं देंगे और 40 दिन तक प्रतीक्षा कराएंगे। और जितने भी अल्प आहार हैं, रस जैसे रस है, फल हैं, फल तो मतलब सद्य पाकी होते हैं, कुछ दिन में ओज में पहुंच जाते हैं, दुग्ध भी वही है, घी भी वही है, किंतु जितने भी ये स्थूल भोजन है जो पिष्ट पेषण करके बनाए जाते हैं, इनको 40 दिन ओज तक बनने में लगते हैं। तो 40 दिन में कितनी शक्ति खा जाएंगे आपकी, आप विचार सकते हैं। नीचमने न प्रणाती थी, नीचमने न पूरा ही खोल दिया, तृतीय में अर्थ है, मतलब यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है, नीचमने न प्रणाती अर्थात चमु छमु अदने, अर्थात खाने के बाद में तृप्त करता है, पवित्र भी करता है, तुरंत करते हैं, खाने के बाद तो सभी करते हैं, पर तुरंत जो बल देने वाला है, कितना भी कमजोर व्यक्ति हो, उठा नहीं जा रहा हो, वृद्ध हो 80 साल का, थोड़ा सा सोम पिला दो तुरंत ही ताकत आ जाती है। पर अब ये दुर्लभ हो गया क्योंकि इसकी प्रशंसा शास्त्र में इतनी, हर व्यक्ति इसके पीछे पड़ा तो पैदा ही नहीं होने दिया, कच्चे ही खा गया। मतलब बीज चाहिए ना आगे पैदा होने के लिए, बीज की प्रतीक्षा किसको थी, कोई और ना खा जाए इसलिए कच्चे खा लो, इसलिए औषधि कम हो गई। पहले हरिद्वार के आसपास ब्राह्मी इतनी मात्रा में थी कि हम खूब उखाड़ उखाड़ के पीते थे जब 20-25 साल पहले हाँ हरिद्वार में। आजकल वहां जब से ब्राह्मी शरबत का आविष्कार हुआ है ना, तब से वहां क्योंकि मजदूर जो है उनको क्या मतलब पकेगी नहीं पकेगी, बेच लो उखाड़ के। अब जब वो कच्ची ही बेच दी गई है तो ढूंढे नहीं मिलती, ये हालत हो गई, क्योंकि हर कंपनी ब्राह्मी शरबत बनाने लगी। तो मजदूर क्या करता है, उसको तो पैसा चाहिए, उसको बीज से तो कोई तात्पर्य है ही नहीं, तो अब समाप्त हो गई। ऐसे ही हजारों औषधियां समाप्त हो गई है, उसको जब जड़ से उखाड़ लिया गया या उसका बीज ही नहीं बनने दिया गया। आगे देखे, पत्नी वंतः सुता इमे उषंतो यन्ति वीताये अपाम जग्मि निचुम पुनः। नहीं, शास्त्र कभी व्यर्थ नहीं होता। कोई कश्यप जी पैदा होंगे और सोम को कहीं ना कहीं मूंजवान पर्वत से ढूंढ के लाएंगे। मूंजवान पर्वत किसी को पता ही नहीं वहां है असली सोम, तो उसमें ढूंढ के लाओ और उसकी रक्षा करो। एक एक हजार एकड़ भूमि ले लो, किसी को घुसने ना दो, कम से कम 20 फुट ऊंची दीवारें और उस पर भी तार, तभी औषधियों की रक्षा तभी होगी। किसी को पता लग गया और 2-4 कमांडो रखो, पर वो भी ऐसे होंगे वो सोम के बारे में जानकारी ना हो ये क्या है। यदि सोम के बारे में जानकारी होगी तो रात रात में पी के और कौन फिर करने की क्या जरूरत ले जाएगा। इसलिए कभी भी सामान्य लोगों को औषधियों का विशेष ज्ञान, क्योंकि उनको बुद्धि का स्तर नहीं है, ऐसी औषधियों का नाश हुआ है। देखो मेरा तो पूरा विचार है, मुंजवान पर्वत के जो लक्षण है उसको खोजेंगे, पूरे भारत के पर्वत को खोजेंगे, लक्षण उसमें बताए हुए हैं और सोम की पहचान भी बताई, वहीं जाके अपना जो है कुटिया बनाएंगे, क्योंकि ये सोम एक दिन में तो मिलेगा नहीं, किस पे 15 पत्ते आ रहे हैं, एक पत्ता रोज बढ़ रहा है, तो 2-4 महीने रहना पड़ेगा तो शायद मिल जाए। और वो मिल गया तो ये जो ये 2-4 महीने तपस्या होगी ये 400 साल तक ले जाएगी फिर, है ना। ना ना, शास्त्र की चर्चा तो भारत की औषधियों की, विदेश वालों की थोड़ी है। पत्नी वंता सुताई में, पत्नी वंता सुताई में उषंतो यंति वीताये। ये सोम क्या है, पत्नी वंता है, पत्नी नाम है, पाति रक्षति थी पत्नी, जो रक्षा करने वाली है उसका नाम पत्नी है, और जो वो रक्षा करने वाले गुण जिसमें है वो कौन है, पत्नीवंत है। तो सोम कैसे हैं, ये रक्षा करने वाले हैं, और कब रक्षा करते हैं, सुता, जब ये निचोड़ लिए गए हैं, अर्थात सोम की डली वो डाली है ना वो नीचे आनी चाहिए, उसका रस ही काम का, ये कहना चाह रहे हैं। इमे उषंत, उषंत इमे सुता पत्नीवंत यंति वीत है उषंत, उषंत नाम है कामयंत, कौन इनकी कामना करते हैं, देखिए सबसे पहले इसकी कामना किसने की थी, इंद्र ने की थी, उसके बाद इंद्र इव है, जानना चाहिए जहां भी प्रत्यय आया है मूल तत्व को छोड़ के इव है, तो यथा इंद्रेण कामना कृता तथैव एतेपि ऋत्विज उषंत, इसकी कामना करते सोम को यंति, यंति नाम गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति वा कम प्राप्नु किमर्थम प्राप्नुवन्ति वीतये, वीतये नाम पानाय, तो उषंतः पत्नीवंतः सुता इमे सोमा वीतये यन्ति भक्षणाय देवान गच्छन्ति। ध्यान देने की बात है, दो घटनाएं हम बताएंगे। यदि ये ऋत्विज हैं तो ऋत्विज इनकी कामना करते हैं, और उषंत ये खुद कामना करने वाले, कौन है उषंत, किसका उषंत के किसके विशेषण है, सुता सोमा, सुता पत्नीवंता सोमा उषंत, ये सब विशेषण है सोम के। तो सोम कामना करते हुए वीते भक्षणाय यंति कुत्र गच्छन्ति देवान, अर्थात आकर्षण के सिद्धांत से सूर्य में भी सोम अपने आप आ रहे हैं, सूर्य की ओर जा रहे हैं कि सूर्य हमारा भक्षण करे, उसके अंदर भी रखा हुआ है और बाहर से भी जा रहा है, ये भी मंत्री इस बात को कह रहा है।
सूर्य के आय का कारण सोम है।
बिल्कुल, सूर्य की ऊर्जा का कारण सोम है, और ऊर्जा का जिसके पास ऊर्जा नहीं उसकी तो आयु है ही नहीं, है ना, तो वो हो जाती है। तो हमारी ऊर्जा का कारण क्या है? हम जो जीवित हैं, हमारी ऊर्जा का कारण भी सोम ही है, जिसको ओज बोलते हैं। सब कुछ वही है, देवताओं का भी वही है और पितरों का भी वही, असुरों का भी वही है। ध्यान देने की बात है, असुर भी उसी से ऊर्जा लेते हैं। हाँ, असुर भी तो एक पदार्थ है ना, तो मूल ऊर्जा क्या है? किंतु वो जो भी असुरों के पास जो भी ऊर्जा जाती है वो असुरी हो जाती है। भाई वो कहते हैं ना कि पात्र में गंदगी लगी है, खीर डालेंगे तो क्या होगा? वही हाल है यहाँ भी। बाकी ऊर्जा का मूल तत्व जो है पूरे अखिल इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, वो सोमी है। इसलिए कह रहे हैं उसंती, उसंता यंती, कामना करते हुए पत्नी बनता है सुता इमे सोमा उसंत कामयंत कान देवान यंती कुत्र गच्छन्ति देवान प्रति किमर्थम गच्छन्ति वीते देवाः अस्माकं भक्षणं कुर्यु तदर्थं वीतये भक्षणाय देवान प्रति एते सोमा गच्छन्ति। क्योंकि इनकी महत्ता कब है? जब ऊर्जा बनेगी। और ऊर्जा कब बनेगी? जब इनका पान किया जाएगा। तो ये भी कामना करते कि हमारा कोई सदुपयोग करे। अपाम जग्मी निचुंपुण अहम निचुंपुण, निचुंपुण नाम है अहम निचुंपुण सोमो व इंद्रो व अपाम, अपाम जग्मी, अपाम नाम है और जग्मी नाम है अपाम जग्मी अहम निचुंपुण सोम अपाम, अपो के साथ में जग्मी नाम है गच्छामि। अर्थात क्या अर्थ हुआ? मतलब सोम में आप तत्व ही है, एक वार्ता, और सोम में जल मिला के ही पिया जाता है, वो इतने तीक्ष्ण होते हैं, अगर आप पी लोगे तो ऐसे ठीक नहीं, क्योंकि जल मिला के उसको टूटा जाता है। तो अपाम जगवी नाम जल के साथ में ही मैं गति करता हूँ, अर्थात जल मिला के ही पीना चाहिए, क्योंकि और उस काल में भी ये था राज, तो शक्ति नहीं बची सोम को झेलने की, तो आज तो आधा जल मिला लेना चाहिए। जैसे किसी को शुद्ध दूध दे दे तो क्या होता है, और उसको पानी मिला के पिलाते रहें तो वो लगता है शुद्ध दूध पी रहा हूँ। ऐसी कई घटना है ना, किसी ने शुद्ध दूध पी लिया तो कहा कि तुम्हारा दूध ही ठीक नहीं था, इसने तो दस्त लगा दिए, क्योंकि अभी तक दूध या उसको पानी मिला के दे रहा था। तो ये है, तो सोम भी एक शक्तिशाली तत्व है। तो अपाम जगमी, एक तो ये घटना शरीर में पीना चाहिए, दूसरा आप तत्व का जो जगमी नाम है गच्छामी, तो आप तत्व के साथ ही मैं रहता हूं, तो मूल रूप से आप तत्व ही सोम है, इसलिए तस्माद वा आप वही सोम, ये वचन भी मिलता है।
तो पीछे का दूध के साथ भी आया था।
बिल्कुल, दूध भी तो क्या है, पाया वही सोम है। हाँ बिल्कुल, वो विशेष परिस्थिति में, यहाँ दूध के साथ थोड़ी, जब सोम याग हो रहा है वहां कहा दूध के साथ इसको इंद्र भक्षण कर रहा है, सीधे भक्षण कर रहा है। हाँ पीछे आया था, तो वो तो उसके समान है, जैसे गाय के थन को पकड़ते हैं दूध निकलने लगता है, ऐसे उसकी डाली को पकड़ते हैं तो सोम निकलने लगता है। अब मैंने कहा कर रहा हूँ, पर वो किस परिस्थिति में, अरे आपको दवाई खानी है, दवाई खानी है तो शहद के साथ खाएं, दूध के साथ खाएं, वो उसके एक अलग विभाग है। जब आपको कोई भयंकर रोग हो जाए, और दूध भी क्योंकि सोम है और उसमें पकाने से आपकी पाचन शक्ति नहीं है, सोम को कैसे बचाओगे, तो दूध में उबाल के पियो। ये औषधि है, तो औषधि के तो अनेक विभाग है। बाकी मूल रूप में जो देवता पीते हैं वो आप इसके साथ नहीं पीते, सीधा पी लेते हैं। आगे चलें, तो पत्नी बनता है सुता इमे अद्भि सोमा, ये रक्षा करने वाले निचोड़े गए जलों के साथ में सोम, कामाय माना यंती, देखो ये ही सोम ही कामना कर रहे हैं कि हम जाएं किसके पास में, इंद्र के पास में, तो दोनों में आकर्षण है, यानी सूर्य सोम यानी आप तत्व को आकर्षित कर रहा है, वहां जाके विस्फोट हो रहा है, एक विभाग। दूसरा पहले से यहाँ रखे हैं तो तभी कामना हो रही है, वो क्या है, एक आकर्षण का सिद्धांत, कोई चीज वहां है तो दूसरे को आकर्षित, अपने अवयव को करती ही है, यही आकर्षण का सिद्धांत है। इसलिए कोई भी ढेला नीचे से फेंकेंगे तो पृथ्वी पे क्यों आता, अंतरिक्ष में क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसी का वो अवयव है। अग्नि ऊपर ही क्यों जाती है? आप तत्व जो है वो नीचे ऊपर ही क्यों जाते हैं? दोनों जगह, अंतरिक्ष में भी और नीचे भी। ऊपर से गिरेंगे तो कहां जाएंगे जो नीचे वाले, और नीचे से उठेंगे तो कहां जाएंगे जो ऊपर वाले। तो हर चीज का अवयव है, इसी को आकर्षण का, वैदिक भाषा में आकर्षण नहीं आंतरिय शब्द है। आंतरिय नाम है, आंतरिय अकस्मात नहीं, आकर्षण तो है, पर जो मैं भाष्य का वचन लिया ना, तो भाष्य में वह आंतरिय शब्द स्थाने, इसका क्या अर्थ है? यथा, तभी तो पता लगे ना आंतरिय कैसे है। भागे कोई घटा दीजिए, नहीं भागे शब्द में आंतरिय क्या है? आंतरिय क्या है वो तो मुझे भी पता, पर वो आंतरिय है क्या शब्दों में? बहुत भारी आंतरिय स्थान का आंतरिय कैसे है? आपको विसर्जनीय आकार का है, आकार का थोड़ी है, तो आवरण का है, आवरण का नहीं है। अच्छा ठीक है, किसमें
इंद्र और सोम का जिससे आकर्षण,
आकर्षण तो जो सोम वहां रखा हुआ है ना वो करता है, इंद्र तो कराता है, बाकी अपनी वो है ना, अपने इंद्रम वर्धन तो अपतुर है, वो तो उसकी तो मैंने अभी आर्य समाज की व्याख्या घटाई थी उसकी, इसलिए व्याख्या तो वो है, इंद्रम वर्धन तो किणवंत अपघनन तो, ये किसको कह रहे हैं? ये वही घटना है, इंद्रम वर्धन तो इंद्र को बढ़ाओ जो वहां सूर्य में बैठा हुआ, कौन है, कौन बढ़ाएगा उसको? अपतुर, शीघ्र जो कर्म करने वाले हैं वो कौन है? आप तत्व है, वो उनको बढ़ाए। किणवंत विश्वमार्यम, संपूर्ण को आर्य करते, आर्य कौन है वहां? वो वहां कथाओं में मत जाओ, आर्य एक पदार्थ है, उस आर्य पदार्थ के कारण ही आप आर्य हैं, अगर आपके अंदर वो पदार्थ नहीं तो फिर आप आर्य नहीं हो सकते। सत्य एक पदार्थ है ना, आया था पीछे रितंच सत्य, सत्य एक गुण भी है और सत्य एक आर्य गुणवाची भी शब्द है, आर्य द्रव्यवाची भी, वो आर्य जो सूर्य में है, और आप ईश्वर पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं क्योंकि, तो आप भी आर्य हैं, इसलिए आर्य स्वामी वैसे। आर्य कौन है? सूर्य आया था ना पीछे, आर्य कौन है? और तस्य पत्यम आर्य, ये अर्थ है वहां, आप सूर्य के संतान हैं इसलिए सूर्यवंशी है। वो आर्य तो एक तत्व है, तो इंद्रम वर्धन्त अपतुर किण्वन्त विश्व, किण्वन्त करते हुए विश्वम अपने आप को आर्य तत्व रखते हुए, और अपघनन्त रावण, जब वो आप तत्व आते हैं ना बड़ा संघर्ष होता है असुरी तत्वों के साथ में, तो उनको सारे रास्ते से हटाते हुए, वही आकर्षण का सिद्धांत हुआ, आदि देवी करते उसका वही है, यानी वैज्ञानिक अर्थ। और बाकी क्योंकि वो घटना हमारे अंदर भी घट रही है आर्यों के अंदर, तो इसलिए हम भी, और आर्य सूर्य तस्य पत्यम आर्य, और हम सूर्य की संतान है इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो शुक्र आया था वेद का मंत्र वो सूर्य से आया था, और पृथ्वी ने अपने उदर में धारण करके सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये आदि देवी घटना है, तो वो पूरा एक तत्व है, बाकी सब इवर्थ में है। अब उस सूर्य के समान उसकी संतान है, वैसे ही हम कार्य कर रहे हैं, हम भी श्रेष्ठ हैं, तस्मात आर्य इव आर्य, इवर्थ है, सीधी सूचना नहीं।
आर्य एक पदार्थ,
हाँ बिल्कुल, सत्य एक पदार्थ भी और सत्य एक गुण भी है, मैं नहीं कह रहा, वेदी कह रहा, रितंच सत्यंचा विधा तपसो, हाँ बिल्कुल, गुण एक पदार्थ ही होता है, पर किस रूप में होता है? जब पदार्थ को हम द्रव्य रूप में देख रहे हैं तब गुण पदार्थ नहीं होता, तब गुण गुण होता है, हाँ वो तो छह पदार्थ में गुण भी आता है, इतने तो मैं भी जान रहा हूँ, आप वहां जा रहे हो क्या? ठीक है, ऐसे विचार जरूर किया करो सुख समुद्धि से, तो हाँ वो तो बात ठीक है आपकी, अगर उसको वैसे देखेंगे, किंतु अब द्रव्य के रूप में देखा जा रहा है, पद्धते गम्यते अर्थो अनेनैति पदार्थ है, तो गुण से भी अर्थ जाना जाता है। तो आगे चलते हैं, तो आर्य एक पदार्थ है, इस बात का ध्यान रखना। और वेद में 64 बार आया है लगभग, आर्य आर्येण आर्यम ऐसे। दो तो आपको याद ही है, अहम भूमि में दादा आर्य चतुर्थी में आ गया, और मैंने लिखे हुए कहीं आपको चाहिए तो दे देंगे, 64 बार कहाँ कहाँ आया। और आगे चलें, तो इमे अद्भि सोमा कामयमाना यंति वीतय पानाय अपाम गंता निचुम पुनः, आई गया नीचमने पुनाती थी निचुम पुनः, और जलों के साथ में मिला हुआ है। समुद्रोपि निचुम पुनः उच्चते, समुद्र को भी क्या कहते हैं, अभी तो सोम को कह रहे थे क्योंकि उसमें भी सोम भरा हुआ है, हीरे मोती सारे। नीचमने पूरियते इति वा, निचमने नाम है जले न पूरियते, जल ही जल दिखता ही दिखाई देता है, इसलिए वो निचुम पुनः समुद्र है। अवभृतोपि निचुम पुनः उच्चते, अवभृत जो है ये भी निचुम पुनः है, नीचे यस्मिन पुनंती, धीरे धीरे इसमें शब्द करते हैं, नीचे दधति, और इसमें जो नीच कर्म है उनको रख देते हैं। मतलब क्या है कि एक इष्टी है वैसे तो, अभी मैं बाद में बताऊंगा, तो उसमें धीरे धीरे बोल के वरुण इसका देवता है, एक कपाल पुरोडास है, और ये जब सोमयाग पूरा हो जाता है तो सारा सामान लेके जलों में जाते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं कि जब आपके सारे कार्य पूरे हो गए, अब ईश्वर ने सोचा ये भूमि रहने लायक नहीं बची, तो पहले क्या बढ़ेगा, समुद्र बढ़ेगा, तो सब कुछ किस में चला जाएगा, तो सारे पात्र यजमान आदि सब वहीं डूबते हैं, जाके डूबते हैं, मतलब फिर निकल आते हैं, तो फिर बाद में नहीं निकलेंगे जब वो आएगा। तो उसका बताते हैं कि क्या होना है, सोमयाग पैदा होने से लेके पृथ्वी के परमाणुओं के और समाप्त होने तक की क्रिया का नाम है सोमयाग। ये संसार कैसे बना, वहां से प्रारंभ होता है आधान, जो अग्निधान है। आर्य समाज में तो हम रोज अग्निधान करते हैं, प्राचीन परंपरा में अग्निधान केवल एक बार होता है, और या कोई दुर्घटना हो जाए तो दोबारा होता है, कोई हानि हो जाए, कोई मर जाए आदि। तो और उसके बाद में जो अंतिम इष्टि है उसका नाम है अवभृत इष्टि। वैसे एक इष्टि उसके बाद में होती है, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, वो तो प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित तो फिर मरने के बाद कौन करता है, पहले कर लेते हैं। इसलिए तो उसमें सारे पात्र आपने देखा होगा निर्जन टापू में रखने का विधान है, मतलब जहां चारों तरफ समुद्र हो, बीच में जाके स्नान करने का विधान है। तो समझाना क्या चाह रहे हैं कि अंत में चारों तरफ पानी ही पानी होगा, अगर आप इसी में डूब के मरोगे, इसलिए अच्छे कर्म करो। मरेंगे तो अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, नहीं अगले जन्म में फिर डूबेंगे, जीवन भर डूबते ही रहेंगे। आगे चलें, तो ये अवभृत क्या है, थोड़ी इस पे चर्चा, बिना कर्म कांड के समझ में नहीं आ सकते। इन्होंने क्या व्याख्या की है, व्याख्याकारों ने क्या व्याख्या किया अवभृत की, वो क्या है, एक इष्टि का नाम है। इसका देखिए क्या क्रिया है, सोमयाग पूरा हो गया है, अब क्या करना है, कुछ पात्र तो अग्नि में जला दिए है ना, पहले अग्नि भयंकर होती है तभी समुद्र, इतनी बरसात होगी फिर समुद्र अपनी सीमा छोड़ेगा, तो क्या दिखाना चाह रहे, तो कुछ तो लोग अग्नि में डूब जल के मर जाएंगे, क्योंकि इतनी अग्नि होगी, भूकंप आएंगे और क्या निकलेगी, ज्वालामुखी, पृथ्वी की अग्नि बाहर आ जाएगी, तो पहले कुछ पात्र तो अग्नि में जला देते हैं। उसके बाद में फिर वो अग्नि के कारण भयंकर बरसात होगी, तो अंतिम क्रिया फिर उसका नाम अवभृत इष्टि है। कितनी बार देखिए, गए थे ना, ये हमारे साथ में थे, मैं आचार्य सहदेव जी, ये वीडियो भी बनाई थी आपने, हमारे पास वीडियो भी है, दिखा देंगे, वीडियो भी नहीं बना रहे दे रहे थे शायद, हाँ जी, हाँ, तो वो यही दिखाते हैं कि पहले तो आप अग्नि में जल जाओगे, आदि जनसंख्या तो वैसी मर जाएगी अग्नि में, रही सही को समुद्र से बचोगे कहां तक, अब यदि समुद्र आ जाए भयंकर गति से, उसी की शतपथ ब्राह्मण में उसी का नाम है, एक मनवंतर के बाद में जब पूरा होता है संधि काल में प्रलय होती है, क्योंकि भूमि रहने लायक नहीं होती, इतने पापी, अब ये बताइए कि अभी इतने वर्ष बचे हैं, अभी इतनी जनसंख्या होगी, बाद में कितने लोग, तो ये डूब के ही मरेंगे, जल के मरेंगे, वैसे तो मर ही नहीं सकते, डॉक्टर नहीं मरने देते, पहले तो पहले तो क्या था कि जनपद का विध्वंस होता था, आयुर्वेद के अनुसार जनपद का विध्वंस कैसे होता था कि राज्य के राज्य खाली हो जाते, ऐसे बीमारी फैलती थी प्राकृतिक तरीके से, अब इन्होंने वायरस ही मार दिए, वो नेबोला जैसा आता है थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा मरते नहीं क्योंकि वो भी कमजोर हो गया वातावरण के कारण, वातावरण के कारण वायरस भी तो कमजोर हो गया, उसको पूरी खुराक नहीं मिलती, तो थोड़े बहुत कोई मारता है, पहले वायरस को भी बढ़िया खुराक मिलती थी, इसलिए वो लाखों लोगों को रोज मार देता था, ये आयुर्वेद में एक जनपद विध्वंस अध्याय है, पूरा का पूरा जनपद ही समाप्त हो जाता है। अब ये इतनी जनसंख्या रहेगी कहाँ, क्यों जी? अभी हम 1.5 अरब होने वाले हैं शायद भारत में, हाँ, और ये 2000 लगा लो, 2000 से ऊपर 2200 तक लगा लो, हम क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, तो कुछ ना कुछ जनपद विध्वंस होगा। है वीर है वहाँ, वीर का अर्थ है योद्धा, पुत्र की बात नहीं, 10 भी वीर ही, वीर का अर्थ पुत्र नहीं है, सैनिक है, किसने कहा वीर का अर्थ पुत्र है?
है? 10 पुत्र तक पैदा कर सकते
नहीं, वो तो वो है जब जनसंख्या ही नहीं थी, लोग सारे ब्रह्मचारी बन जाते थे तब के लिए आदेश, और जब मोक्ष में जाते थे सारे, तो ऋषियों ने सोचा मोक्ष में सारे चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, पृथ्वी में तो कोई चाहिए, तो उनको उपदेश करते थे, ये तब के लिए, आज के लिए उपदेश कैसे काम करेगा यहाँ तो। हाँ, और आगे चले, अभृतो, तो ये अभृत एक इष्टि है, वरुण देवता है, वरुण जल का ही देवता है, और वो कुपित हो जाता है तब वो समुद्र से बाहर आ जाता है, समुद्र से बाहर आएगा तो समुद्र कहाँ जाएगा, वो भी उसके साथ साथ आएगा, तो सब कुछ पानी पानी होता है। शतपथ ब्राह्मण में पूरी एक कथा है, लंबी चौड़ी कम से कम 1 घंटे की कथा है, तो उसमें कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, पानी कैसे चढ़ा, मनु जी ने अच्छे अच्छे विद्वानों को बैठा लिया, अच्छे अच्छे गृहस्थियों को उसमें बैठा लिया नौका में, और मछली के सींग भी होते हैं उस काल में, आजकल तो दिखाई नहीं देते, तो वो सींग में उसका फंदा डाल दिया बड़े पानी के जहाज का, और वो मछली उसको ले जाती रही, बड़े बड़े भूकंप आते थे तो मछली बचा लेती थी जो लहरें आती थी, और जाके उत्तर हिमालय में उसको एक जगह छोड़ दिया, और मछली को ये भी पता था कि इसके बाद पानी नहीं चढ़ेगा, देखो, तो उसके बाद पानी नहीं चढ़ा, मनु जी बैठे रहे सारे अपने लोगों को खाना पीने का लेके बैठे रहे, मछली कह के आई, मछली को यह भी पता था कितने दिन में पानी उतरेगा, तो धीरे धीरे पानी उतरा, तो धीरे धीरे वो वेद भी उनके पास थे सारा था, तो 2-4 हजार लोग बचे, बड़ी नाव होगी तो 1 लाख लगा लो, तो बाकी सारे मर गए, और उसके बाद में फिर उन्होंने दोबारा अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये ऐसा शतपथ ब्राह्मण में है, आपको शायद पता नहीं, यहूदियों की और ईसाइयों की बाइबिल अलग अलग है, जो हिब्रू विश्वविद्यालय इसराइल के अंदर 6 विश्वविद्यालय हैं, 75 लाख जनसंख्या है, उसमें 4 में संस्कृत अनिवार्य है, हमारे जो एक मित्र हैं हिब्रू विश्वविद्यालय जो यरूशलेम के अंदर है वो संस्कृत भी जानते हैं, हिंदी भी, मैसूर में परिचय हो तो संस्कृत पढ़ने आए थे जब मैं मीमांसा पढ़ता था, तो तब उनसे परिचय होता, अभी भी बात कभी कभी होती रहती है, तो उन्होंने बताया कि हिब्रू बाइबिल अलग है, हिब्रू बाइबिल का विभाग के वो अध्यक्ष हैं, तो उसमें क्या है कि ये कथा है शतपथ ब्राह्मण वाली, पूरी की पूरी वैसे ही कथा है, मनु को बस वहां हनु लिखा हुआ है, मनु का नाम वहां हनु है, मछली प्रलय की ये पूरी कथा है, और उसी बाइबिल को देख के इन्होंने अभी कोई फिल्म बनाई थी 2012 या क्या कोई फिल्म, तो कब आई, कोई एक फिल्म आई है कि जो समुद्र समुद्र टूट जाएगा, उन्होंने बताया कि उसी बाइबिल के आधार पे इन्होंने ये फिल्म बनाई है, अच्छा हमें तो पता नहीं, हाँ पर वो मन पूरी, मैंने उनको एक कथा बताई थी कि शतपथ में ऐसे आपके यहाँ कुछ ऐसा है कि बोले कि बिल्कुल ये, क्योंकि उस विभाग के वो अध्यक्ष हैं, और नाम भी उस मार्ग का वीर शिवा मार्ग है जिसपे वो रहते हैं, हाँ वो मेरे पास उनका पूरा पता है, मतलब वहां संस्कृत के बहुत ज्यादा शब्द हिब्रू में है, और अग्नि पूजक है ये लोग, तो वो पूरी की पूरी कथा शतपथ ब्राह्मण की उनकी हिब्रू बाइबिल में है, हाँ उसका बस नाम हनु लिखा हुआ है, और कोई अंतर कथा में कोई अंतर नहीं है, और आगे चलते हैं, तो इसमें क्या है कि वो सारी अंत में ये बताना चाह रहे हैं पूरा सोमयागी निर्माण से लेके विकास से लेके परमाणु के विकास से और उसका क्या क्या हुआ पूरा अंत में जाके सब समुद्र में मिल जाना है, यही बता रहे हैं, यहीं तक की कथा है, उसके बाद तो फिर क्या होता है सब धीरे धीरे गल जाता है समाप्त हो जाता है, आगे नहीं बताया क्योंकि स्थूल बुद्धि से इतना ही समझा जा सकता है, नाटक में दिखाया भी यही जा सकता है, वो सूक्ष्म चीजें तो कैसे समझेंगे। अब आगे देखें, पदिम, पदिम एक शब्द है, इसका अर्थ है यत पद्यते, जो जाया जाता है या जाता है, पदि गंतुर भवति यत पद्यते, पदि का अर्थ क्या है गंतु, जाने के लिए भक्ति जो तैयार रहता है हमेशा कहीं कोई भी बुलाए, यत पद्यते या जो गमनशील है वो पदी यानी अतिथि है, क्योंकि अतिथि तैयार रहता है नहीं रहता है। अभृत निचुंपुण निचुंपुण अभृत वर्तते, इतने अर्थ है इसको तो। निचुंपुण यानी क्या है, सोम है। निचुंपुण क्या है, समुद्र है। निचुंपुण एक इष्टि का नाम है, अभृत है तो वो भी निचुंपुण है, क्योंकि वो भी क्या चमनेन प्रणाति, वहां भी इष्टि जल में अग्नि है। ये नहीं जानना चाहिए कि जलों में तो बेकार हो जाएगा डाल के, जल में भी अग्नि है, क्योंकि जहां भी आहुति है वहां अग्नि देवता ही है, तो जल में तो बेकार हो जाएगी डाल के नहीं, जो अग्नि देवता जलों में, इसलिए भूमि पे भी आहुति देते हैं, घी की सोमयाग आपने देखा होगा, तो वहां क्यों देते हैं कि भूमि में भी अग्नि है। पदी गंतुर भवति यत पद्यते, पक्षी भी है जो गमनशीलता जिसमें, यत पद्यते जो गमनशील है, पक्षी क्या है गमनशील है, अतिथि क्या है गमनशील है, जो भी गमनशील है वो सब पदी है। जानवान भी पति है, क्योंकि जानवान ही वैसे ज्यादा पदी है, क्योंकि गमनशील वही ज्यादा है। सुगु असत सुहिरण्य स्वस्व व्रियदस्मै वय इंद्रो ददाति यस्तु आयंतम वसुना प्रातरित्व मुक्षी जय पदी मुत्सिनाति। ये बड़ा अच्छा मंत्र है, ये आप लोगों के ध्यान के लिए, कि भाई जो किसी गृहस्थी के घर में अतिथि आता है तो उस गृहस्थी को क्या मिलता है एक बार तक, और जो नहीं देता तो उसको क्या मिलता है, वो बंधन को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सारे पुण्य ले जाता है। इसलिए अतिथि आए तो उसको बांध लो, मतलब इतनी सेवा करो कि वो जाए ना, ये मंत्र कह रहा है। नहीं, उसको इतनी सेवा करो कि वो खुश हो के ज्यादा बढ़िया उपदेश करे, आपका अपना बन जाए, और यदि उसको बेचारे को रूखा सूखा खिला दिया कोई नहीं कि चलो कहीं और ही ठिकाना देखते हैं। और इतनी भी अतिथि की सेवा तो मतलब करनी चाहिए, भी इतनी ना करेगी जाए ना तो भी मुसीबत। तो अब आगे देखो, यही मंत्र कह रहा है, सुगु असत सुष्टु गमनशील अतिथि अभवत, और सुगु असत सुहिरण्य सुष्टु हिरण्यानी यस्य। ये कौन हो रहे हैं, सारे गृहस्थी हो रहे हैं, जो अतिथि। गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि जो गृहस्थी है जिसके घर में भी है, सन्यासियों का भी घर है, जो घर में रहने वाले हैं वो सब गृहस्थी हैं। सन्यासी भी अपना आश्रम है, घर है, वो कोई बाहर थोड़ी रहता है, खुले में थोड़ी सोता है, बढ़िया व्यवस्था में रहता है। देखो हर व्यक्ति का एक घर, महर्षि दयानंद का घर था, नहीं था कहीं तो ठिकाना था, प्रेस भी मंगाई थी कहीं विदेश से, प्रेस भी उनकी अपनी थी। जब तक संसार में रह रहे हैं कुछ ना कुछ तो ठिकाना है, बैंक बैलेंस भी होता है आजकल तो, और आगे चलो। तो सुहिरण्य सुअश्व, उसको घोड़े भी बढ़िया मिलते हैं, जो अतिथि अच्छी सेवा करता है विद्वान की। जो गृहस्थी यानी जिसके घर में कोई व्यक्ति आया, यदि वो अच्छी सेवा करेगा तो उसके साथ में उसको सोना मिलेगा, सेवा का फल है, फिर अच्छे घोड़े भी मिलेंगे। और वृहदस्मय वय इंद्रो ददाति, इसकी आयु भी बढ़ेगी जो अच्छी सेवा करेगा, क्योंकि अच्छी सेवा करेगा तो विद्वान अतिथि कोई बढ़िया उपदेश करेगा, कम सेवा करेगा तो कम करेगा। मैं नहीं कह रहा, मंत्र कह रहा है, कभी कोई सोचे कि मैं कह रहा हूं। यस्तु आयंतम वसुना, जो आए हुए अतिथि को वसुना, वसुना नाम है वसुआच्छादन है, भोजन भी एक आच्छादन है, वस्त्र भी एक आच्छादन है, व्यवस्था भी एक आच्छादन है, तो वसु के द्वारा प्रातरित्व प्रातः काल आए हुए अतिथि को मुक्षी जया इव जाल के समान पदिम उत्सिनाती बांध लेता है। जैसे पक्षी को जाल में बांध लिया तो वो जाता नहीं है, ऐसे ही जो अपनी सेवा भाव से अतिथि को बांध लेता है तो उसको क्या क्या फल मिलता है, सुहिरण्य सुअस्व, घोड़ा बांधने की जगह नहीं है तो फिर क्या करे, वृहदस्मयी वय और आयु तो मिलेगी है ना। हाँ ये देखो मनुजी ने इसी मंत्र की व्याख्या की है, समझो अतिथि का क्या अर्थ है, कोई भी आ गया वो अतिथि हो जाएगा क्या। अतिथि सातत्य गमनम करोति जानाय उपदेशाय वा, स्वयं अतिथि नाम है, अतः सातत्य गमन, जिसका खुद सातत्य गमन नहीं हो दूसरा क्या करेगा। विद्वान की बात है, यहाँ वेद में कोई सामान्य अतिथि नहीं कि न तिथि विद्यते, वो अतिथि नहीं है। दो अर्थ अतिथि के, न तिथि विद्यते अस्य, जिसकी कोई तिथि नहीं कभी आ जाए वो नहीं है। अतिथि सातत्य गमनम करोति, जान उपदेश के लिए लोगों को महर्षि दयानंद असली अतिथि थे, कोई सुनना नहीं चाह रहा पकड़ के समझाते थे, राजाओं को जबरदस्ती तो पकड़ते थे। किसी ने कुंभ मेले में बुलाया था क्या, गाड़ दिया टेंट, ये तो इतने कमजोर है कि सुनना भी नहीं चाह रहा, इतना अज्ञान है तो पकड़ के सुनाएंगे, यही काम थोड़ा बहुत हम भी कर देते हैं। क्या वृद्ध का मनुजी ने जिस काल में लिखा था, आजकल के बड़े बूढ़ों की बात थोड़ी है, वहां वृद्ध का वो तो जान वृद्ध थे जब मनुजी ने लिखा था, तो वो तो विद्वानों के लिए है ये भी। और माता पिता जो वृद्ध हैं उनके भी जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी तो घटती है कुछ, तो बात घटती है, आयु से वृद्ध लगा लें फिर वो कल्याण के लिए ही तो करेंगे ना। बाकी मुख्य अर्थ तो है वो, तो बाकी तो इव अर्थ है, वृद्ध का अर्थ है जो जान से वृद्ध, क्योंकि ये न संति वृद्धा ये शाम कलिता शिरा, ऐसा मनु जी कह रहे हैं। तो वृद्ध का अर्थ हुआ विद्वान ही माना। तो आगे चलते हैं, तो जिसको नहीं हुआ तो वज्र मारती, वो भी छत्राणी थी, कोई सामान्य थोड़ी थी भाई। जिसका पति इतना बड़ा योद्धा, कुछ तो सिखाया होगा, और वो राजी पुत्री थी तो वो तो युद्ध करने के लिए तैयार रहती, पर वो तो धोखे से हुआ कार्य। जब ये बताइए उनकी सास जो केकई थी वो भी युद्ध की बड़ी विशेषज्ञ थी, दशरथ को युद्ध जिताया था एक बार उसने, तो क्या ये छत्राणी उस काल में ऐसे थोड़ी थी, तो योद्धा तो होगी पर धोखे से हुआ है, नहीं तो रावण के लिए वो अकेली काफी थी, वो हथियार हथियार नहीं उठाने दिए होंगे। आगे चलो, तो सुगु भवती सुगुर भवती सुहिरण्य स्वस्व वृहदस्मय वयेन्द्रो ददाति यस्तु आयंतम अन्नम न प्रातरागिनम अतिथये। तो जैसे प्रातः काल कोई अतिथि आ गया, उसको अपना बढ़िया सेवा से कोई बांध लेता है, तो उसको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। हीन उपमा है, हीन उपमा कैसे, पक्षी को तो किसी और प्रयोजन से बांधा जाता है ना, जैसे पक्षी को जाल में बांध लिया, तो पक्षी को जाल में बांध लिया, बांधा तो वो भी है पर ये सेवा से बांधे, हीन उपमा है कि छोटे से बड़े की उपमा दी जा रही है। मुक्षी जयायु पदिम उत्सिनाति कुमार है, जैसे कोई बच्चा जो है ना पक्षियों को जाल में बांध लेता है, मुक्षी जा मोचनात सैनाच्य तननाच्य, या तो उससे छुड़ाया जाता है इसलिए वो मुक्षी जाल है, या सैनाच्य, सैनात का क्या अर्थ किया है, शिये बंधने से बनाया गया, तो बंधनात्व और तननात्व, क्योंकि जाल को फैलाया जाता है, तनु विस्तार किया जाता है। पंचतंत्र पढ़ा नहीं जाल में की कथा, बूढ़े की बात मान लेते तो अब ये मनु जी क्या कह रहे कि बूढ़ों की बात माननी चाहिए, क्यों कह रहे हैं, अब देखिए कितना क्या शिक्षा दे रहा है पंचतंत्र, कोई कबूतर बोलते थोड़ी है, पहले भी नहीं बोलते थे आज भी नहीं बोलते थे, किंतु वो शिक्षा क्या देना चाह रहे हैं कि बूढ़े की बात मानो। जब चित्रग्रीव ने कहा कि भाई मुझे कुछ संदेह है, नवयक बोले क्या बूढ़े की बात कर रहे हो, यहाँ इतने दाने मिल रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं, आपको खाने में भी संदेह है। फिर एक नवयक कबूतर कहता कि भाई संदेह कहाँ नहीं है, खाने में संदेह, कमाने में संदेह, मरने में संदेह, जीने में, आपको तो हमेशा संदेह ही रहता है, इसलिए हमें तो खाने दो। फिर उसने कहा कि नहीं देखो वो काम हो गया था, एक कथा और सुनाई, फिर नवयक उन्होंने बात नहीं सुनी, सारे जाल को प्राप्त होने के बाद पिटने के बाद अकल आई कि इसकी बात मान लेते तो ठीक थे, फिर भी उसी ने अकल दी कि फिर क्या बता रहे, अगर ऐसे कहीं फंस जाओ तो क्या हो जाए, उस काल में तो संगठित हो जाओ, पिटने के बाद में फिर भी नहीं होते। तो जब संगठित हुए तब बूढ़े की बात मानी, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इतना बल है, अगर हम एक ताकत से एक समय एक क्रिया करेंगे तो हम इसको लेके उड़ जाएंगे, तो उस काल में बात मानी, तो जाल को लेके उड़ गए। फिर क्या शिक्षा देनी कि आपत्ति काल के लिए मित्र भी रखने, तो चूहा मित्र था, जाल कौन काटेगा, कबूतर नहीं काटेंगे, और चूहा मित्र नहीं होता तो वो जाल क्यों काटता। तो मतलब पूरा पंचतंत्र एक राजनीति से लेकर धर्म नीति का एक शास्त्र है, व्यावहारिक शास्त्र है वो।
जी जैसे कोई शब्द है
जी, जी
शब्द लिए थे जी, पत्नी रक्षा हमने निर्वचन किया, लेकिन कोई पत्नी ऐसी है कि जो रक्षा नहीं करती
है, वो कुपत्नी है, उपसर्ग है उसके लिए।
निर्वचन परिवर्तन कर देंगे उसके लिए?
नहीं नहीं, निर्वचन वही रहेगा, केवल पुत्र कुपुत्र। ये तो बताया हुआ ना, नहीं हाँ कु हो गई, वो कुत्सित पत्नी कुपत्नी, क्योंकि पत्नी का तो कर्तव्य क्या था, पति भी ऐसे कुपति दुष्पति, वैसे कु की जगह यहाँ दुष्शब्द प्रयोग होता है। हाँ तो निर्वचन में अंतर नहीं आता, बस उपसर्ग अर्थ बदल देता है। निर्वचन तो नित्य है क्या? आगे चलते हैं, तो ये हो गया मुक्षी जय पदिमु सनाति कुमार, तो ये तननात फैलाया जाता है जाल, तो ऐसे अतिथि को जाल में बांध लें। हाँ भाई तभी उसकी ठीक वैसे ये इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई गृहस्थी लोग जो है ना अतिथियों की सेवा करें, और सेवा करें तो मेवा तो कुछ मिलेगी इतना ही अंतर है, बाकी ये ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ऐसा है, बस ये बांध बांध ना ले, उसको बांधने में तो फिर उल्टा हो जाएगा।
भी सेवा करनी
है अभी ऐसा नहीं, किरण होते हम तो वैसे अतिथि पराय बनते ही नहीं है, हमें तो कोई खतरा है नहीं। पादु अस्य निर्णिजो न मुच्यते, पादु पद्यते, पादु कस्मात पद्यते, वही अर्थ है, इससे भी जाया जाता है। तो आविह स्व कृणुते गुहते बुसम, जन नाम में पड़ा ध्यान रखना, स पादु अस्य, इसकी जो गति है निर्णिज, निर्णिज नाम है, निजिर शोच पोषणयो, क्या धातु है, ऐसे कुछ धातु है, सूर्य को भी निर्णिज कहा पीछे आया था, तो निर्णिज न मुच्यते, तो निर्णिज सूर्य से इव मुच्यते, मुच्यते नाम न मुच्यते, यहाँ उपमार्थ में नहीं है न, निषेधार्थ में, जैसे सूर्य का शोधक गुण नहीं छूटता ऐसे इसकी गति नहीं छूटती, कैसे वो बता रहे हैं। आविष्कृ आवि, आवि नाम है, बताइए क्रिया है क्या है, हाँ आवि और शय और किरणुते वह अलग है, ये ध्यान रखना है, वह अलग होना चाहिए, अथवा यदि वह भी जुड़ा हुआ है तो आविष का सकार हो गया, किससे हो गया, हाँ जी विसर्ग को सकार किससे हुआ, तभी आविष्कृणुते बनेगा, नहीं स्वयं होना चाहिए, स्वय आदित्य भी आया था, नहीं विसर्ग को होगा ना सकार, तो आविश शब्द है, हाँ विसर्जनीय से सह कैसे हो गया, किसके परे रहते होता है, तो शर में कौन ककार आता है, किरणुते, तो फिर नहीं हुआ, इसका मतलब कोई और सूत्र बताओ, आविश आवि विसर्ग था, अब त्रिणुते आगे आ गया है, अब इसको दोनों को मिला के वो पद हो गया है, पर एक तो ये किससे हुआ, विसर्जनीय से सह, इसमें क्या शर्त है, तो खर में ककार आता है आगे ना, बस तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। आवि स्कृणुते नामे उद्घाटयति प्रकटयति, स्व स्व नाम है आदित्य, किम गुहते, गुहते नाम है गृहते गृणाति वा, भूषम नाम है जलम, स पादु, स कह स किसको कह रहे हैं, स सूर्य, पादु पादु नाम है पद्यते इति अर्थात गतियुक्ता, अस्य निर्णिज शोधक स्वरूप है न मुच्यते, इससे नहीं छूटता है, क्या बात निकली इसका, हाँ अब इसका अन्वय कर लेते हैं तभी अर्थ खुलेगा, सामान्य अर्थ होगा स कह स्व, स के बाद में स्व रखो, स स्व यानी आदित्य, आविष्कृणुते किम आविष्कृणुते, देखिए क्रिया के बाद में कर्म की अपेक्षा होती, तो इतना हमें पता लगा, एक वाक्य हमारे को समझ में आ गया, स स्व आविष्कृणु, तो वह आदित्य उद्घाटन करता है, प्रकाशित करता है। तो उसके बाद में संशय क्या रहा, किसको आविष्कृणुते, सकर्मक धातु है तो कर्म क्या है, तो जो इसमें द्वितीय में हो या षष्ठी में हो, षष्ठी में भी कर्म होता है, और तो उस पद को पास में रख लो, अन्वय करने का तरीका है, तो किसको पास में रखेंगे, भूषण, तो किम कम आविष्कृणुते भूषण, और भूषण आविष्कृणुते किम करोति पुनः गृणाति, भाई उसको उद्घाटित तो कर दिया, जल को नीचे से ऊपर उठा दिया, तो क्या किया फिर उसका, गुहते गृणाति, रश्मियों के माध्यम से ऊपर ले जाता है, हाँ गुहु संवरणे, संवरण करना तो ग्रहण अर्थ में ही होगा, संवरण करना किसी चीज का मतलब ग्रहण करना अच्छी प्रकार से, गुहु संवरण धातु है ना, वो तो वो भी धातु है, पर यहाँ संवरण अर्थ में है, छिपाता तो नहीं ना, तो वैसे छिपा भी लेता है, जलों को ले गया, हमें पता कहाँ छिपा लिया जाके, हमें पता ही नहीं है, पर हमारे लिए तो नहीं, हमारे लिए कश्यप जी ठीक कह रहे हैं, हमारे लिए तो गुहाते हो जाएगा, वो तो सारा जान ही रहा है, किंतु यहाँ एकत्रित करने के बाद चल रही है ना, दोनों घट जाएंगे, वैसे इसमें दोनों में भी घट सकते हैं, क्योंकि दोनों क्रिया आदित्य में घट रही है। उसके बाद में क्या कहना चाह रहे हैं, अब ये हमारे पास कितने पद बचे, पादु अस्य निर्णिज न मुच्यते, बाकी सबका अन्वय हो गया, तो अब इनको आपस में कैसे जोड़ें, अस्य षष्ठी है, संबंध को जोड़ना पड़ेगा, और संबंध को जोड़ेंगे तो संबंधी को जोड़ना पड़ेगा, तो संबंधी कौन है पहले, तो अस्य निर्णिज, हाँ अस्य निर्णिज पादो न मुच्यते, तो संबंध हो गया, संबंधी शब्द आ गया, तो इसका ये जो गमन शक्ति है ये कभी भी इससे नहीं छूटती, अरे ये नित्य इसके साथ है, कि ये चीजों को उठाता है छुपा लेता है, चीजों को उठाता है और इकट्ठा कर लेता है, दोनों एक ही बात है, सूर्य के अंदर चीजें हो रही हैं। अब इसको आगे देखें, भूषम इति उदकन आविष्कृणुते भासम आदित्यो गुहते भूषम, ये जल को छुपा लेता है इकट्ठा कर लेता है, भूषम इति उदक नाम है ब्रवीते शब्द कर्मण है, क्योंकि जब गिरता है तो शब्द करता है, भ्रंसतेर्वा या भ्रंसु अध्यापतने, ये नीचे गिरता है, यद वर्षन पात्यति उदकम, ये कौन है, वो आदित्य है, रश्मि भी तम आदित्य, देखो कितना भारी विज्ञान है, दुनिया में कोई भी चीज नष्ट नहीं हो रही, यद वर्षति उदकम, पहले जल को बरसाया और फिर अपने जल को रश्मियों से वापस ले लिया, मतलब केवल आदान प्रदान है, नाश तो है ही नहीं, जो अच्छा आदान प्रदान करता है उसका नाम देव या ऋषि हो जाता है, और जो नहीं करता उसका नाम असुर हो जाता है, इतना ही अंतर है। हाँ मंत्र है ना, अदितेर दक्षो अजायत, ये हमारा एक विज्ञान का मूलभूत सूत्र है, सूत्र मतलब मंत्र, अगर वेद के विज्ञान को जानना है तो उसका ही मूलभूत है, ऋग्वेद का है, अदितेर दक्षो अजायत, अदिति से दक्ष पैदा हुआ, और दक्ष क्या है, दक्ष वृद्ध शीघ्रार्थे च, यानी पदार्थ, जहां ये घटना हो रही है पदार्थ, अदिति से द्रव्य पैदा हुआ, और दक्षात अदिति, दक्ष से फिर अदिति बन गई, मतलब ऊर्जा द्रव्य में, द्रव्य ऊर्जा में पुनः चला गया, यही नियम है जी। कर्म क्या है जो नष्ट हो गया, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यदि नष्ट हो गया तो आपको संस्कार क्या है फिर,
नहीं वो कर्म नहीं किया,
और कौन सा क्रिया, हर चीज अपना प्रभाव छोड़ती है, क्रिया का प्रभाव नष्ट नहीं होता, वो इतना क्रियते इति सतः, कर्म की परिभाषा क्या, क्रियते इति सतः, जो किया जा रहा है वो कर्म है, तो किया जाना, करना, देखना, सुनना, बोलना, हंसना, चलना, जहां ये सारी चीजें उसका नाम, तो संस्कार क्या है फिर, यदि कर्म नष्ट हो गया तो हमारी और आपकी दृष्टि में तो थोड़ी देर के लिए मान लें, आत्मा की और परमात्मा की दृष्टि में वो भी नष्ट नहीं होता। हमारा हम तो क्योंकि हमारी स्मृति कमजोर है, आत्मा की नहीं है, आत्मा तो सारे संग्रहण रखता है, तभी तो ये सारी चीजें याद आ जाती हैं फिर आ जाती हैं। तो इसका मतलब यदि वो नष्ट हो गया, आपने कौन सी चीज आपको खाने में पसंद है? करेला। आप हंस क्यों रहे हैं? इसका मतलब इनको करेला पसंद है, तिक्त रक्स पसंद है, तो इनकी बुद्धि तीव्र होनी चाहिए। तिक्त रस जो है वो सोम का है, करेला एक करेला तो स्थूल दिखाई देता है, वो एक पदार्थ है, वो तो आकृति विशेष है, रस की बात है, उसमें तिक्त रस है। और तिक्त रस से बुद्धि बढ़ी, जितने भी दिव्य पदार्थ हैं पीने लायक खाने लायक, सोम सबसे वो तिक्त रस वाला है, और कसाय रस भी दोनों मिलके मीठा नहीं है। तो अब यदि करेला का कहीं छोंक लग रहा हो तो आपका तो जो पहले करेला खाया था नष्ट हो गया, आपको ये कैसे पता लगा यहीं से बैठे बैठे कि करेला ही है? इसका मतलब कर्म नष्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये तो जो दिखाई देता है ना क्रिया नहीं है, यही तो एक समस्या है। मैं नहीं, भाष्यकार पे तो विश्वास है ना, वैसे सिर्फ हाँ
विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ, भाष्यकार ने बहुत हाँ, तो स्पष्ट कहा कि कर्म दिखाई नहीं देता है। हाँ, लेकिन वैशेषिक ने कहा कि कर्म दिखाई देता है, वो भी आंखों से
कर्म दिखाई देता है। हाँ, वैशेषिक ने कहा ये बात मैं भी मानता हूँ, पर वो किस रूप में कहा है? नहीं, शब्द प्रमाण तो वो भी है, भाष्य भी शब्द प्रमाण है। तो इसमें क्या है ना, अगर आप इसको क्रिया मान रहे हैं तो ये क्रिया नहीं है, आप भोजन करने को क्रिया मान रहे हैं तो वो भी क्रिया नहीं है, अगर आप भोजन पकाने को क्रिया मान रहे हैं तो भोजन पकाना भी क्रिया नहीं है। ये ही है क्रिया अत्यंत अपरिदृष्ट, क्रिया तो मन में है, ये तो केवल आकृति विशेष हिल रहा है, मतलब वो आपको हिलता हुआ दिख रहा है किंतु वो नहीं दिख रहा जो असली है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंगते विवक्षा है, मन कायाग्निम सपरेरियति, इतनी ये आपको दिखाई दिया, वो असली क्रिया है, ये तो क्रिया इव क्रिया, या ऐसे कह सकते क्रिया का स्थूल रूप थोड़ी देर के लिए। आगे चलते हैं, तो ये सारा हो गया, तो ये रश्मि से ग्रहण कर लेता है, इसका मतलब ये तो एक चक्र है और इस चक्र को मनुष्य ने बिगाड़ दिया है। बिचारी रश्मि अभी क्या करे, वायु भी क्या करे, अब वायु को जो भोजन चाहिए था, वायु को चाहिए था शुद्ध वायुमंडल, और उसमें टैर जड़ा दिए, पन्नियां डरा दी, गंदे नाले डाल दिए, सब कुछ कर दिया, तो वायु क्या करेगी? वायु जिस सिद्धांत पे काम करती थी मनुष्य ने उसके विपरीत किया, तो वो कुपित होगी। अभी कह रहे कि हुदुद हो गया, कोई उद्भुत हो गया, हुदुद हो गया, क्या नाम है उसका, 2000 करोड़ कितने होते हैं जी, इतने का तो नेवी को नुकसान हुआ है, आंध्र में पहुंच चुका है, राजस्थान का बारह है। तो अब ये क्या है, सरकार मूल तत्व पे ना अमेरिका काम करे, इनको बुद्धि नहीं, बुद्धि का स्तर ही नहीं है। अरे एक वायु है जो कुपित हो गई है, और कुपित को और कुपित नहीं किया जाता, उसकी सेवा की जाती है। देवता कुपित हो तो उनकी सेवा करो, बांध लो उनको, अभी मंत्र आया था है ना, उसको बांध नहीं रखा तो वो तो खुले छोड़ दिए, वो तो जो भी करेंगे करेंगे जहां तक उनकी सीमा, अगर उनकी सेवा करेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। उनकी सेवा क्या है, घी के बढ़िया उसके पास में हुदुद के बाट में बैठ के हवन करो, सारे करो बढ़िया, वो तो वायु जो कुपित है अब उसको खाने को भोजन मिलने लगा बढ़िया घी को, इनको क्यों खाएगी कबाड़ सबाड़ को, ये रहस्य है विद्या का, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो तो पहले करेंगे तो आएगा नहीं, अब जब आ गए तब क्या करें, अब तो गौतम जी को वहां बैठ के हवन करते रहो। नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि वो उठने के बाद रुक जाएगा, गति कम जरूर उसकी हो सकती है अगर दूर से प्रयास करें तो, किंतु पहले ही कर ले, इनको तो पहले से कई दिन से चल रहा था ना कि वो आने वाला है, आने वाला है शायद, एक महीने पहले से बताओ, तो तब तो कर सकते थे ना। पर किसी को ये अकल ही नहीं है, ना नेताओं को अकल है, ना इनको अकल है, मरो जनता को 2000 करोड़ रुपए का घी नहीं खरीदेंगे, गाय नहीं पालेंगे, है ना, वहां लगा देंगे, और नेवी का जो नुकसान है उसकी भरपाई इतनी जल्दी थोड़ी होगी। तो ये है, पर हम इनको भविष्य में सबको ठीक कर देंगे। आप लोग वेद पढ़ लो एक बार बस, हम दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे यज्ञ में कितनी ताकत है। आगे अब चतुर्थ पाद है, इसमें जो है अनेक विषय हैं। इसमें सबसे पहले चंद्रमा है कि ये चंद्रमा क्या है, क्या करता है। इसमें वृक के अर्थ भेड़िया भी है, वृक का अर्थ कुत्ता भी है, वृक का अर्थ चंद्रमा भी है। तो जितने अर्थ हैं वो पहले इसमें आएंगे। और इसमें एक बड़ा अच्छा मंत्र आएगा कि जो ईश्वर है ना, ईश्वर की दृष्टि में दंड का भागी कौन है, ईश्वर किसको दंड देता है और किसकी रक्षा करता है, वो उस पर हम व्याख्या करके भी चलेंगे। तो प्रारंभ करते हैं, सबसे पहला शब्द है वृक, ये 65वां है 66वां है। हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज साफ नहीं आ रही है, तो हमने तो कान में भी लगा लिया आप लोगों कारण, वैसे कान में नहीं लगाना चाहिए इतनी देर। तो वो लिख रहे हैं ना कि आवाज नहीं आ रही है, ये है वो, अभी अभी आवाज आने के लिए भारत में 2-4 साल और लगेंगे, जब 4G आ जाएगा तब तक तो समस्या रहेगी ही। अब हट जाते हैं, कभी जुड़ जाते हैं। चलो, तो इसमें वृक है चंद्रमा भवति, वृक है कस्मात, चंद्रमा भवति तस्मात, इनके अनुसार निर्वचन है, व्याकरण का तुम बाद में, अभी वृक है कस्मात, चंद्रमा भवति तस्मात, अभी तो निर्वचन यास्क तो यही तो कहना चाह रहे हैं ना। विक्रम जी समझ में तो आ रहा है ना, हिंदी में बोला जा रहा है, गुजराती में कर दिया करो कुछ अनुवाद, गुजराती में बता दो चंद्रमा किसको कहते हैं, फिर अपना मौन होके बैठे रहो। वृक है चंद्रमा भवति विवृत ज्योतिष को, विवृत ज्योतिष को तस्मात, तस्मात संशय वर्तते कि, तो विवृत ज्योतिष को वा, विवृत ज्योतिष को भवति तस्मात चंद्रमा वृक, तो विवृत ज्योतिष का नाम है विशेषण क्रांत ज्योतिष का, अर्थात जिसने आच्छादित कर लिया है अन्यों के प्रकाश को। क्यों जी, जब चंद्रमा निकलता है और ज्योतियां भी निकली होती हैं जो तारे हैं, तो किसके प्रकाश आता है, हमें किसका प्रकाश दिखा, हाँ तो इसने ढक लिया है सबको, इसलिए विवृत ज्योतिष। सूर्य को भी चंद्रमा कहना चाहिए, बिल्कुल कह देंगे आप चाहोगे तो। विवृत ज्योतिष को वृक है तस्मात सूर्य भी वृक है, वृक कहेंगे चंद्रमा नहीं कहेंगे, चंद्रमा इसलिए नहीं कहेंगे, चंद्रमा एक शब्द है जिसका नाम चंदा मामा है, सूर्य को कोई सूर्य मामा नहीं कहता। तो चंद्रमा अलग एक सत्ता है, किंतु वृक जरूर कह सकते हैं क्योंकि वो भी आच्छादित थी, सूर्य को वृक कह सकते हैं चंद्रमा नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य ऊष्म और चंद्रमा वो गाम धरती है, गाम ददाती है, दोनों की क्रिया अलग अलग है। और आगे चलते हैं, दूसरा निर्वचन है विकृत ज्योतिष को, ये विकृत ज्योतिष वाला है, सूर्य तो गर्म है और ये ठंडा है, अथवा विक्रांत ज्योतिष को, अथवा विक्रांत ज्योतिष है, विक्रांत ज्योतिष है ना, विशेषण क्रमति प्रकाशेण ज्योतिषी द्वारा विशेषण क्रमति, अपने प्रकाश से विशेष आक्रमण करता है, किस पे करता है, जहां भी है मतलब उनको दबा लेता है, छुपा लेता है, उसके सामने दिखाई नहीं देते। और सबसे बड़ा बात है कि जब ये चंद्रमा दिखाई देता है रात को, तो सभी औषधियों में राजा, विक्रांत है ये, विशेषण क्रमति औषधिशु वनस्पतिशु मनस्सु आदि सब जगह, अथवा ज्योतियों में भी विशेष रूप से इसका प्रकाश गया हुआ है, कई अर्थ इसके हो सकते हैं। इसका मंत्र दे रहे हैं अरुणो मासकृत, चंद्रमा जो है मास को मासम करोति थी मासकृत, महीने को बनाने वाला। ये महीने बनते कैसे हैं अभी मोटा मोटा बता देता हूं, 27 नक्षत्र हैं, तो एक दिन चंद्रमा का एक नक्षत्र से संबंध होता है, तो एक दिन हो गया, इसलिए चंद्रमास जो है ना थोड़ा कम ज्यादा होता है। नहीं फिर वो गणना थोड़ी बहुत किसी में दो दिन रह लेता है, गति के ऊपर भी है थोड़ा, डेढ़ दिन रह लिया तो कोई कभी 28 का हो गया कभी 29 का हो गया, ऐसा है। बाकी तो चंद्रमास जो है वो छोटे होते हैं। और ये हमने तो हम तो सूर्यवंशी थे, अब मुसलमानों ने सोचा हम इनसे अलग हो रहे थे, हम भी एक वंशी पकड़ लें, इसलिए क्या हो गए, इसलिए इनके जो सारे आते हैं वो किसके अनुसार आते हैं, रोजे आदि सारे, इसलिए कभी वो सर्दी में आ जाते हैं कभी गर्मी में आ जाते हैं। हाँ तो उनके अनुसार है, इसलिए पाकिस्तान के झंडे पे कौन है और आर्यों के झंडे पे क्या है, सूर्य कहाँ है, होना चाहिए सूर्य चक्र होना चाहिए। तो अरुण जो चंद्रमा है प्रकाश करने वाला, मास कृतिये मास को करने वाला है वृक, पथायंतम, पथा नाम मार्ग में जाते हुए को ददर्श, मैंने इसको मार्ग में जाते हुए को देखा कि ये कौन से मार्ग में जा रहा है, ओम का झंडा, सारे जहां में फहरा देंगे ओम का झंडा हमारी, बस आप लोग वेद पढ़ लो। उज्जीते निचाया तष्टये पृष्ठ आवयो वित्तम यस्य रोदसि, तो इसके बाद क्या होता है कि चंद्रमा को मैंने देखा, किसने देखा, जो ज्योतिष आचार्य को वही देखेगा, आप लोग तो केवल चंद्रमा को देखते हो, कौन से मार्ग में जा रहा है ये थोड़ी देखते हो, आज कौन से नक्षत्र में है, कल किस में था, कब निकल रहा है, कब उदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, तो ये कौन जानता है, ददर्श ही कौन जानता है, जो इसका विशेषज्ञ है। और उज्जीते, उज्जीते नाम उच्च रूपेण जीते त्यजती व उदेती व, निचाइये, निचाइये नाम दृष्टवा तष्टाए, तष्टा कहते हैं वर्धकी, जैसे बूढ़ा हो गया है तक्षक, छीलते छीलते उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है, बढ़ई बढ़ई लकड़ी की छीलते छीलते कमर टेढ़ी हो जाती है ना, इनको क्यों कह रहे हैं, अच्छा वो आदमी तो होता है कोई तो बंदर है क्या तक्षक, नहीं नहीं, तो वर्धकी तष्टा मतलब वर्धकी तक्षणोती थी तष्टा, पृष्ठामयी वो पृष्ठ का रोगी हो जाता है, उसकी कमर झुक जाती है, क्योंकि बेचारा ऐसे झुके ही काम करता है ना, तो आजीवन वही काम किया तो कमर तो झुकेगी। वित्तम मैस्य रोदसी, तो तष्टा इव पृष्ठामयी, जैसे जो वर्धकी जो पृष्ठ का रोगी है वैसे ही ये, जैसे वो झुके चलता है ऐसे ही ये जो चंद्रमा है ये भी आज इस नक्षत्र में झुकता है, कल उसमें झुकता है, परसों उसमें झुकता है, ऐसे ये भी काम करता है, कभी इनकी उच्च गति भी है और इनकी निच्च गति भी ध्यान देना चाहिए। हाँ इसी को बोलते हैं कि उच्च भगण और नीचे भगण, भगण मतलब जितना वो चलता है एक साल में चलेगा इतना चलेगा वो भगण बोलते हैं, हर उसके एक भगण है, सूर्य का भगण है, सावन मास भी है, चांद्र मास भी है और सौर मास भी है। हाँ नहीं भगण तो वो भगण अलग है, वो तो वो अलग है कि दीर्घ है या ह्रस्व है, वो भगण भगण वो अलग है। हाँ उसके लिए एक सूत्र है, वो भगण नहीं, भगण मतलब एक साल में चंद्रमा के कितने भगण होंगे, मतलब चंद्रमा कितने चक्कर लगाएगा उसके उसके, फिर वो उच्च भगण भी है कि जब उच्च स्थान में पहुंचेगा तो जब ऊपर को थोड़ा चढ़ेगा तो गति कम हो जाएगी, तो उच्च स्थान में जाएगा तो उसकी गति कम है और जब नीचे स्थान में आएगा तो ज्यादा, क्योंकि ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे तो अंतरिक्ष में ऊंचा नीचा कुछ है नहीं, एक समझाने का तरीका है, तो उसके भगण है वो, तो उस वो भगण कैसे बनते हैं, उसकी गति के कारण बनते हैं। सर्पाकार तो ऐसा तो सीधा नहीं है पर कुछ माना जाता है, पर ये ऐसे तो है अंडाकार जैसा होता है ना ऐसे, गोल चीज ऐसे कैसे चलेगी,
नहीं गोल होते हुए भी
एक वो मार्ग मार्ग ऐसा है, जो मार्ग ऐसा है वो वस्तु ऐसी नहीं है। हाँ मार्ग तो ऐसा है, मार्ग के बारे में तो आता है। तो ये क्या है आगे देखिए, वित्तम मेस्य रोदसी, हे रोदसी द्यावा पृथ्वी, मेरे इस जीवन वृत्त को जान लो। इसका क्या अर्थ हुआ, हे द्यावा पृथ्वी मेरे इस वृत्तांत को, वृत्तम नाम है वृत्तांतम, क्या है वृत्तम एक सूत्र, वित्तम एक सूत्र है सप्तम अध्याय में बोलो है? इसका क्या अर्थ है, वहां निपातन किया है वित्त शब्द को,
वित्त शब्द भोग किया
और भाई ये तो पाणिनी का ही है, वही पूछ रहा हूं मैं, निपातन किया है किस कि, निपातन क्यों किया, वित्तम भोग भोग प्रत्यय अर्थ हो वित्तम इति निपात्य थे, प्राप्ति क्या थी, यह इष्ट का निपातन निषेध किया है, इट ना हो नकार कहां से आ गया, वहां सातवें अध्याय के पहले पाद में अच्छा सूत्र बोलो, दो चार सूत्र ऊपर बोलो, पता लग जाएगा क्या चल रहा है। तो वित्तम भोग प्रत्यय का क्या अर्थ है, वित्तम इति एतत् निपात्यते, कस्मिन् अर्थे भोग प्रत्यय, तो भोग और प्रत्यय का क्या अर्थ है, तब तक समझ में नहीं आएगा वित्तम या सिरोध से समझ में नहीं आएगा,
भोग
तो और प्रत्यय, तो वित्तम वृत्तांतम जानम मेस्य रोदसी, हे रोदसी द्यावा पृथ्वी मेरे इस रुदन को अथवा मेरे इस पीड़ा को अथवा मेरे इस वृत्तांत को जानो कि ये क्या है। तो ये क्या है, कहना है क्या जा रहा है कि द्यावा पृथ्वी क्या जानेगी, आप जानोगे चंद्रमा कब कौन से नक्षत्र में कैसे जा रहा है क्या काम कर रहा है, द्यावा पृथ्वी तो जान ही रही क्योंकि वहां तो घूम ही रहा है। जहां भी वेद में आता है जानो अर्थात आप हे मनुष्यो इसको पढ़ने वालों मुझे जानो कि मैं कौन हूं और कैसे काम करता हूँ, ये दिन कैसे बन रहे हैं, महीने कैसे बन रहे हैं, कला कैसे है, विकला कैसे है, और रात्र क्या है, मुहूर्त क्या है, ये सारा क्योंकि ये सभी नीचे बनते हैं तो ये जान। हाँ वो तो वृतोवा है, आगे चलें। अरुण है आरोचन है, अच्छी अच्छा लगता है ना चंद्रमा को देख के व्यक्ति को, वैसे तो सूर्य को देख के भी अच्छा लगता है पर आंखें देखने नहीं चाहती। मास कृत भाषा नाम च अर्धभाषा नाम च करता, ये बनाने वाला है चंद्रमा, चंद्रमा वृक है पथायंतम, चंद्रमा कौन है वृक है और पथायंतम ददर्श, उसको जाते रास्ते में देखा नक्षत्र गणम, आज इस नक्षत्र में हूं मैं, कल इसमें हूं, परसों इसमें, देख के चलता है। अभिजीते निचाई है ये नियन, अभिजीते नाम है उदेति, यह हाँ अभिलक्ष्य जीते त्यागम करोति वा उदेति वा, आज इस नक्षत्र को छोड़ेगा तो दूसरे में उदय होगा, त्याग के बाद ही तो प्राप्ति होगी ना, आज मघ नक्षत्र में था कल दूसरे में होगा, तो एक को छोड़ेगा दूसरे को प्राप्त करेगा, उसी को जीते क्रिया से कहा है। निचाइये निचाइये नाम है दृष्टवा ये नियन योक्षमाण है, जिस जिसके साथ में जुड़ता हुआ भवती चंद्रमा तत् तक्षुवन, उसको छीलता हुआ इव पृष्ठ रोगी, जैसे पृष्ठ रोगी नीचे देख के छीलता है कमर झुका के, ऐसे ही उसको देखते देखते चलता है। जानीतम मेस्य द्यावा पृथ्वी, हे द्यावा पृथ्वी मेरे इस चंद्रमा के रूप को आप जानो, द्यावा पृथ्वी इनके रूप को जानेंगे कि मैं कब कहाँ हूं, वैसे कार्य करो फिर मुझे देख के, अर्थात द्यावा पृथ्वी तो जान ही रही है आप इसको जानो।
आप
सारे तो नहीं, वैसे कुछ तो बता सकते, पर यहाँ प्रकाश ही इतना होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता ठीक से। उसके लिए दूरबीन मैंने किसी को बोला हुआ, आई नहीं अभी तक। एक बढ़िया दूरबीन है, 21,000 रुपए की है, मैंने वो नेट से किसी को कहा था कि इसको भेजो, आई नहीं। पर नहीं, वो आधे रेट पे है वैसे तो मार्केट में, तो ज़्यादा कि फ्लिपकार्ट में वो आधे रेट पे है, तो इसलिए मैंने किसी को कहा था कि भाई मेरे को भेज दो, तो भेजी नहीं अभी तक, पता नहीं क्या हुआ। तो वो दूरबीन से ज़्यादा दिख जाते, वो दूरबीन ऐसी है कि वो बहुत नज़दीक दिखा देगी, मैंने देखा हुआ है उससे। जानिता मैं से द्यावा पृथ्वी, तो मेरे इस वृत्तांत को जानो। आदित्यो भी वृक उच्चते, आदित्य को भी क्या कह आ गया ना अपने आप ही, वृक कहा, चंद्रमा नहीं कह सकते, वृक जरूर। यद आवृंगते, आवृंगते नाम है आसमंतात वृंगते त्यजति अथवा विनाशयति कम तम, अंधकार को विनाश कर देता है। क्योंकि वृक का अर्थ भेड़िया भी है, भेड़िया जिसके भेड़िया के हाथ में जो आ गया उसका क्या करता है, तो ऐसे ही अंधेरे का आवृंगते नाम है आच्छाद्यति नहीं है विनाशयति। अजो हवीत अश्विना वर्तिका वामस्नो यत सीम मुंचतम वृकस्य, इसका अर्थ सूर्य पे कर रहे हैं। अजो हवीत, अजो हवीत का अर्थ क्या है, आह्वान करना ही क्या है, अजो हवीत है। तो उसने आह्वयत बुलाया, किसको बुलाया, किसने बुलाया, उषसा, उषा के द्वारा वर्तिका ने अश्विनों को बुलाया कि भाई आ जाओ। वैसे तो ये तो इससे पहले आते हैं, वाम, वाम माने आप दोनों, तो ये कुछ मतलब विज्ञान की दृष्टि से तो इनका समय पहले है, फिर बाद में क्यों बुलाया। वापस तो उषा के काल तक तो थोड़े रहते हैं, बाद में धीरे धीरे पूषा, फिर सूर्य, सूर्य के बाद तो अश्विनी बचती नहीं,
सूर्य निकल रहा होगा, सूर्य सामने
चलो चलो इसका कर लेते हैं। अश्विना वर्तिका ये होगी, वाम आसन, आस से कहते हैं मुख को, मुख से यत सीम मुंचत वृकस्य, वृक के मुख से आपने मुझे छुड़ाया है, तो आप मुझे छुड़ाने के लिए आ जाओ, ये कहना चाह रहे हैं।
आदित्य वृक,
तो आदित्य तो बाद में आएगा,
आदित्य के मुख से छुड़वाया
है ये, तो कह रहे वृकस्य ये आसन, आसन तो मुख को कहते हैं ना, आस्य आसन एक ही बात है। हाँ, तो मतलब वही तो है कि ये कौन सी घटना है, क्योंकि वो तो दोनों सूर्य तो आदित्य तो बाद में आता है। अब इसका अर्थ ये होगा आदित्य रसयति आदित्य, और वृक क्या है, आदित्य है, और वृक का क्या अर्थ है, विवृत ज्योतिष को, ये तीनों तीनों चीजें हैं। तो उस काल में भी ज्योति तो होती है, और उषा भी तो आदित्य का एक रूप ही है ना, उषा जो है आदित्य का ही एक रूप है, प्रकाश तो सब जगह सूर्य का है। भाई पहले अश्विनी, पहले सबसे पहले रात्रि, रात्रि के बाद में अश्विनी, अश्विनी के बाद में उषा, उषा के बाद में पूषा, पूषा आएगी, पूषा के बाद में सविता, सविता के बाद में सूर्य, तो बाद में आता है एक और है वो आता है उसके बाद सूर्य, उसके बाद में विष्णु, विष्णु के बाद में ये, और जब सूर्य छिपता है तब कौन है, अग्नि। हाँ, पूरा 24 घंटे में कौन सा देवता क्या करते हैं, ताकि उस देवता को पूजा पाठ करके आप कुछ प्राप्त करो, इसलिए बताया। पूजा का अर्थ यह है कि उसका सदुपयोग करो। अब बेचारा अश्विनी देवता 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा, तो फिर बुद्धि कैसे बढ़ाएंगे, तो इसलिए 2 बजे उठ के जो अश्विनी दे सकते हैं 2 से 4 के बीच में, बोले उठे ही 4 बजे जब अश्विनी चला गया, थोड़ा बहुत रहता होगा उसका, कोई काम का है नहीं, फिर उसके बाद में कमजोर हो जाता है क्योंकि उषा आ जाती है। तो इसका पूजा का अर्थ यही है, शत्रु की पूजा क्या है, दुष्ट की दंड देना, और देवताओं की पूजा क्या, उनका सदुपयोग लेना। तो जो जिस काल में है, तो अब यही कह रहे हैं कि वो जो प्रकाश है ना, विवृत ज्योतिष को है या विकृत ज्योतिष को है या विक्रांत ज्योतिष को है, इसलिए वृक है, क्योंकि वृक की बात चल रही है। तो वृकस्य आसन मुखात मुंचतम, तो आप मुंचतम द्वितीय का है ना, मतलब ये है मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो किसने, अश्विनौ मुंचतम, तो अश्विनो ने बचाया, तो वही होगा कि अश्विनो ने बचाया, तो आदित्य के मुख से बचाना क्या हुआ कि भाई आदित्य आएगा तो इसको नष्ट ना कर दे, तो उससे पहले ही निकाल लिया, उसका क्षेत्र होने से पहले उषा भी चली गई, और वो किसने निकाला उषा को, अश्विनी ने, क्योंकि वो भी जा रहे थे, इसको भी साथ में लेके चले गए, ऐसे ही कहना चाह रहे वैसे तो। आव्यत उषा अश्विनौ आदित्य ने, आदित्य से बचाया, अभिग्रस्त आदित्य ने उसको पकड़ लिया था उषा को, तम अश्विनौ प्र मुमु चतु इति आख्यानम, ये कथा है, इतनी है बस। ये आख्यान है, मतलब बचाया, कोई बचा नहीं रहा, सब आदित्य के ही रूप है, अपने से अपने को बचाया, अर्थात उषा के बाद जब उषा चली गई तो आदित्य आ गया, है जी, अपने कंधे पे स्वयं चढ़ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए कंधे पे रखिए,
हाथ रख सकते, चढ़ा तो पैर से जाएगा।
ये किसने सिखाया कि आपको पैर से ही चढ़ा जाता है, हाथ से नहीं चढ़ा जाता, आरोहण क्रिया है। अब मेरा मम हस्त तत्र स्कंदे आरोहति नावा, उच्चतम, मम हस्त मम स्कंदे आरोहति नावा, मेरा हाथ मेरे कंधे पे आरोहण कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, तो बताओ। अदिति माता से पिता से पुत्र से भ्राता, ये भी तो आया था, उसको कैसे भूल गए। माता का अर्थ क्या है, आप लोग माता का अर्थ वो माता ले लेते हो, माता का क्या अर्थ है, मिमाती मानयति जानाति निर्मियते अस्मिन, ये सारे अर्थ जितने भी मांग माने मिये माने हिमिदा सनेने, सारे जितने के अर्थ है ना, वो सारे माता के अर्थ, तो वो स्नेह देती है ना ये सूर्य को, वो भाई उस काल में वो होती है ना, वो सूर्य को तो देके जाती है, उस लेके कहाँ जाती है, तो माता हो गई। ईसद हंसने, थोड़ा थोड़ा उस काल में हंसी आ जाती है जब देखते हैं, तो हंसी भी सूर्य को देके जाती है, जो अंधेरा था अंधेरे में तो हंसी आती नहीं, टक्कर लगती है तो रोता है व्यक्ति, जब थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है, अगर उस काल में पशु भी हंसते हैं, आपने देखा पक्षी भी हंसते हैं, और मुर्गा तो खूब हंसता है, जो मुर्गे का काल है ना वही उषा का काल है, है? तो वातावरण में उस काल में हसन होता है, ईसद हसन, ऐसा लगता है कि आकाश हंस रहा है, थोड़ी थोड़ी लालिमा आ रही है ना, रोने में तो पीला हो जाता है, मुख हंसता कहां है। और आगे चलें, आगे पाठ कर लेते हैं, पूरा भी कराना है, स्वापि वृके उच्चते व्याख्या होगी, पाठ खींचा जाएगा, क्योंकि आगे भेड़िए वीडियो में हमारा क्या काम है, स्वापि वृके उच्चते, भेड़ियो को भी कुत्ते को भी क्या कहा गया है, विकर्तनाथ, क्योंकि बिना प्रयोजन के काट लेता है, बिना प्रयोजन के काटता है, उसका ना उसका कुछ सिद्ध हो रहा है ना इसका सिद्ध हो रहा है। और विकश्चिदस्य वारण उरामथी, फिर इसको पिटाई करनी पड़ती है, कह रहे विकश्चिदस्य, तो इसका जो इंद्र का भी एक कुत्ता है वो इनको राक्षसों को काटता है, ये बड़ी विचित्र बात है। ये देखो विकश्चिदस्य, अस्य नाम है इंद्रस्य, इसका देवता इंद्र है, अस्य इंद्रस्य विकश्चिद भेड़िया भी अप्यर्थे वर्तते, वारण कस्य वारण है लिख लो, शत्रु नाम वारण है, ये शत्रुओं को हटा देता है, और उरामथी है, ये उरामथी भी बड़ा विचित्र है,
कुत्ते का उरामथी,
हाँ उरामथी का अर्थ है उरु, बहुत अधिक मथती हिंसती, ये शत्रुओं को मारने वाला है, और इंद्र की एक कुकरी भी है, हाँ उसमें लिखा हुआ है, और व्याकरण का एक उदाहरण भी है, बोलो कहाँ है, चौथे अध्याय के पहले पाद में बोलो, हाँ हाँ इंद्र की एक कुतिया है, उसमें शुद्ध उदाहरण है व्याकरण में, बोलो इंद्राणी से अगला सूत्र बोलो, चौथे अध्याय के दूसरा पृष्ठ बदलने पे दूसरे विभाग में नीचे सूत्र है। स्वालिट उसका उदाहरण है। वो बोलो बोलो, वो सूत्र तो बोलो ना, दो सूत्र पहले से बोलो, ये तभी समझ में आएगा कि उरामति क्या है। इंद्र की एक कुतिया का उदाहरण आया है नहीं आया? दीर्घ जीवी और आगे चलो, सूत्र ही नहीं मिला इसका मतलब उदाहरण याद नहीं कर रखे। दीर्घ जीवी यही है ना, वो है कि उसकी हवि को कौन खा जाती है? हाँ, दीर्घ जीवा वाली कुतिया उसकी हवि को खा जाती है जो ये नहीं करता, ये उदाहरण है उसका। तो इंद्र की एक कुतिया है, इसमें भी आगे आएगा कि एक बार इंद्र की गाय को वणिकों ने, वैश्यों ने चुरा लिया और उसको जंगल के पार ले गए। इंद्र ने कहा कि जाओ ढूंढ के लाओ गाय कहाँ, कुतिया से जो दीर्घजीवी कुतिया है, तो उसको कहा, तो वो खोजने गई, आखिरकार उसकी सूंघने की शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है, जाके पकड़ लिया वणिकों को। वणिक उसको लालच दे रहे हैं, तू इंद्र को छोड़ दे, हम तेरे को ये देंगे, इंद्र को मत बताना, खूब उसको कहा। उसने कहा देखो कुत्ता इसलिए वफादार होता है, मंत्र में लिखा हुआ है। उसने कहा कि नहीं, इंद्र मेरा राजा है, वो जैसा भी है जैसी भी मेरी, एक पूरा सूक्त है कुछ बताना चाह रहे हैं कि मैं उसकी, और देखो इंद्र इतना शक्तिशाली है तो गाय मुझे लौटा दो, मैं गाय को लेके जाती हूँ, अगर नहीं लौटाई तो वज्र आने ही वाला है, बस मैं सूचना देती हूँ आप सारे मारे जाओगे। तो एक पूरा सूक्त है उसका, उसको बोलते हैं पणिक, और वो इंद्र की जो वो है उसका नाम कुछ और याद नहीं आ रहा, तो वो दोनों का एक सूक्त है, संवाद है, पणिक का और कुतिया का संवाद है। तो वहाँ इसमें आएगा, निरुक्त में आ गया है, तभी चर्चा करेंगे। तो ये वही है, उरामति का अर्थ है ये कि मथ देता है, मतलब जो भी शत्रु को मिलते हैं उनको हिंसा कर देता है, बहुत प्रकार से मारता है, कुत्ता काट लेता है, खा जाता है, और वो राड़ वाड़ छोड़ देता है तो वैसे ही मर जाते हैं बहुत से लोग तो कमजोर, क्योंकि उसमें भी वायरस होते हैं, है ना। तो ये इंद्र का है पर सामान्य नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा विचार करके कुत्ते मत पाल लेना वरना कि इंद्र का भी था, ये दिव्य कुत्ता है सामान्य नहीं है। उर्ण मथी, या तो ये बहुत अधिक मथता हिंसा करता है, उर्ण उर्णवान भवती, तो उर्ण का अर्थ है भेड़ों को मारता रहता है, वृक भी और कुत्ता भी, इसलिए उर्णमथी है। उर्ण का अर्थ उर्णवान भवती कौन, भेड़। उर्ण पुनर्वीर्ण होते उर्ण होते रहा, उर्ण को उन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वीर्ण होते हैं, या उर्ण या शरीर को ढक लेती है या आच्छादित कर लेती है। शरीर को तो ढकती है किसके, भेड़ को, और हमारे को क्या करती है, ऊन आच्छादित कर लेती है। दोनों में अंतर है। विर्णोते का अर्थ तो वो है जो जिसके साथ में है, हमारे साथ तो स्वाभाविक है, सर्दी में उड़ते हैं तो इसलिए हम उर्ण होते हैं, आच्छादन दूसरे रूप में। वृद्धवासी नी अपि वृक उच्चते, जो भेड़िए की पत्नी है उसको भी वृकी कहा है। शतम मेषान वृक्य चक्षदानम वृद्राश्वम तम पिता अंधम चकार, उसके पिता को अंधा कर दिया। शतम मेषान, अब देख तो लो पहले, अब ये कह रहे हैं कि शतम मेषान 100 भेड़ों को, है ना, वृक्यई भेड़िया की जो स्त्री है उसके लिए चतुर्थी है, चक्षदानम, और ये चक्षदान कर दिया, चक्षदान क्या है, तो उसके लिए 100 भेड़ी दी, और चक्षत उसने उसको संतुष्ट हो गई, भेड़ी जो है उनको 100 भेड़ों को लेके जो वृकी है वो संतुष्ट हो गई, हाँ परितुष्ट। और दानम रिजा अश्वम, रिजराश्वम और रिजा अश्व जो एक व्यक्ति था उसको जो अंधा हो गया था उसको दानम, उसको दान दे दिया। किसका? आंखों का ही दान दिया होगा फिर तो। इसको ऋग्वेद से निकालो, ऐसे बात बनेगी नहीं। आधा मंत्र है, निकालो ऋग्वेद से निकालो। इसका बताओ कौन सा है? 116 16। महर्षि दयानंद का तो भाष्य भी होगा इस पे तो फिर तो। 116 16। इसका ऋषि देखिए पहले क्या है। कक्षीवान है, और कक्षी क्या है पहले आ चुका है। प्रख्यानम भवती, दर्शनम भवती सारे, और वो वाला जो है वो कक्षीवान इसका ऋषि हो गया। और नहीं, कक्षीवान दीर्घ तमस ओषिज, ओषिज की तो संतान है और दीर्घ अंधेरे में रहने वाला है, और कक्षीवान उसका नाम है। और अश्विनव देवते हैं, और त्रिष्टुप छंद, यानी घटना अंतरिक्ष की हो रही है। ध्यान देने की बात है कि घटना कहाँ की है? अंतरिक्ष की है। अश्विनी देवते हैं और दीर्घ तमस ऋषि है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं? शतम मेषान वृक्कई चक्षत, 100 भेड़ों को भेड़ी के लिए, भेड़ी मतलब भेड़, भेड़ी नहीं नहीं भेड़िया की पत्नी भेड़ी है, हाँ तो उसके लिए 100 भेड़ों को भेड़िया की पत्नी के लिए दे दिया। और चक्षत सा परितुष्टा, वो क्या हो गई उनको देख के कि बढ़िया अनेक वर्षों तक कार्यक्रम चलेगा तो वो तुष्ट हो गई। और रिज्रास्वम तम पिता अंधम चकार, रिज्रास्वम ऐसे व्यक्ति को जो भेड़ी को इतनी भेड़ दे रहा है उसको क्या कर दिया? रिज्रास्वम तम पिता अंधम चकार, पिता ने उसको अंधा कर दिया कि भेड़ी को भेड़ क्यों दी भाई? 100 भेड़ पालनी चाहिए थी, उनका बड़ा लाभ होता, आपने भेड़ी तो खाएगी, किसी को थोड़ा खाएगी किसी को मार देगी, तो उसने श्राप दे दिया कि तूने मेरी भेड़ी जो है ना, मेरे पशुओं को तूने भेड़नी को दे दिया, इसलिए उसको अंधा कर दिया। ये नित्य घटना अंतरिक्ष में हो रही है, आपके अंदर नहीं है, ध्यान रखना, आपके अंदर भी है। तस्मई अक्षी ना सत्या विचक्षे, और उसके लिए जो आंखें थी जो अंधा हो गया था रिजरासु, उसको ना सत्य कौन था? अश्विनव आया था ना पहले, ना सत्य अश्विनव, अश्विनव ने उसको लिए वो विचक्षे दर्शनाय अक्षी तस्मई आधत्तम, उनके लिए वो आंखें पुनः दे दी, मतलब अंधे को भी ठीक कर दिया वो। उसके बाद क्या हुआ? दशरव, दशरव नाम है अश्विनव, भिषजव अनर्वन, ये सब इसके विशेषण है ना सत्या के। हे ना सत्यव संबोधन है, संबोधन कैसे पता लगा? दशरा भी सर्वनिघात है, भिषजव भी सर्वनिघात है, और ना सत्य भी सर्वनिघात है, तो स्वर कैसे लगा? सर्वनिघात है वो तो, स्वरित तो वो उदात अनुदात से स्वरित है। तो हे नासत, हे दशरव भिषजऊ नासत्यऊ तस्मयी रिजा रिज्रा अश्वम या रिज्रा अश्वाय अक्षी विचक्षे चक्षणाय आधत्तम, और उसको इसने आंखें दे दी। और अनर्वन, अनर्वन मतलब सरलता पूर्वक बिना कठिनता के, उसको कष्ट भी नहीं हुआ, ऐसी शल्य चिकित्सा की, उसको पता ही नहीं लगा आंखें ठीक हो गई। तो इससे क्या पता लगा कि ये अंतरिक्ष में रहने वाला पदार्थ कौन है? वृकी भी अंतरिक्ष में रहती है ना, रिजराश भी अंतरिक्ष में रहता है, उसका पिता भी अंतरिक्ष में रहता है, और ना सत्यो भी, उनको तो बुला लिया जा सकता है, वो तो कहीं भी घूमते रहते हैं अश्विनी देवता। तो ये अंतरिक्ष में रहने वाली घटना है या भेड़ी का कोई भी इससे संबंध नहीं है। हाँ, और इसमें सारे अश्विनी देवताओं के गुण है, इसमें चवन ऋषि का भी मंत्र होना चाहिए, देखना जो बूढ़े से जवान हो गया था इसी में होगा वो। ये पूरा अश्विनी देवता का ही तो सुख चल रहे हैं आगे, इसी में होना चाहिए वो। रुको भाई, अलग नहीं, इसी में होना चाहिए। इसमें चंद्रमा कैसे बना, ये भी इसी में, इस सुक्त में ही है। चंद्रमा पृथ्वी से निकला है, ये मंत्र भी इसी सूक्त का जो पहला आता जो वही था अश्विनावर्ती का, ये भी इसी का। हाँ देखो, निकालो अगले सूक्त का, निकालो अश्विनी को जवान बनाया था इन्होंने, चरण ऋषि को, खुद होंगे तभी तो बनाएंगे। तेरहवा मंत्र निकालो। अब खुद कोई बूढ़ा सा 80 साल का आके कहे कि मैं आपको पुनर्युवा बना दूंगा, भाई खुद बनने पहले जभी तो विश्वास होगा। अब ये मिल गया ना। अब ये देखो च्यवनप्राश की जो बात है वो एक रहस्यमय विधि है। अब ये देखिए, युवम च्यवानम, हे अश्विनव, युवम च्यवानम, बूढ़े च्यवन को अश्विनव जरंतम, अत्यधिक बूढ़े को पुनर्युवानम चक्रतु सचिवी। अब देखिए, अपने कर्मों से उसको मंत्र में बात है, तो इसको कैसे निषेध करेंगे, बूढ़ा जवान नहीं बन सकता। अब मुनि जी को बना देते पर समस्या है कि बच्चे नहीं पहचानेंगे। अब आप 25 साल के बन गए तो आपको यहाँ आप आके कहेंगे मैं देव मुनि हूँ, हम ही कहेंगे हम तो आपको नहीं जानते, देव मुनि तो कोई और था, पुलिस को बुला लेंगे ज्यादा करोगे तो। तो और मुसीबत है, ऐसा हो सकता है ना माता जी। अब आके कमरे में घुस जाएंगे देव मुनि जी के नाम से, पहचान में तो आएंगे नहीं 25 साल के, तो क्या करना पड़ेगा फिर। प्रयोग तो है नहीं, आप क्या मान रहे कि प्रयोग नहीं करना है, सारे प्रयोग करने हैं, जितने भी शास्त्र में लिखे हुए हैं जो व्यक्ति कर सकता है जो लाभ करे, सारे प्रयोग अपने जीवन में। किनका, कौन अच्छा। चलो जी आगे चलते, तो मैं दिखाना चाह रहा था कि केवल ये क्या क्या करते हैं। एक वो भुज्जू जो है समुद्र में डूब रहा था उसको निकाल दिया इन्होंने, और ये कर दिया वो कर दिया, पूरे अश्विनी देवताओं के सुख थे आगे तक। अर्थात इसका क्या तात्पर्य है कि अश्विनी ऐसा करते हैं तो पहले अश्विनी को जानो कि वो कौन है, उनके गुण धर्म और वो द्रव्य किस रूप में है, फिर वो अश्विनी देवते किन किन पदार्थों में रहते हैं, उनका काल क्या है, और उसको अपने जीवन में घटाओ, आप भी पुनर्युवा हो जाएंगे। पर च्यवन अगर कोई चाहेगा कि आज का च्यवनप्राश खा के जवान हो जाऊं तो ना? अगर च्यवन ऋषि कहीं से भूला भटका आ गए तो उससे सिर का दर्द ठीक हो जाता है, उसके फूल को गुड़ के साथ खा लो। नहीं उसमें तो ऐसा तो नहीं है शास्त्र में। आगे आगे चलते हैं, वो बलिष्ठ जरूर है और कम मात्रा में खाना चाहिए। आगे चलते हैं, तो ये हो गया, अब हमें पता लग गया, कहना चाह रहे थे आधे मंत्र से बात नहीं खुल रही थी, पूरे से खुल गई। अब आगे देखें और भी आएगा, जोशवाकम इति अविज्ञात नामधेयम। जोशवाक क्या कि हमें पता नहीं है क्या है, जोशितव्यम भवति ये जानने के योग्य है, जो विज्ञापनीयम भवति कहने के योग्य है कि भी ये है। ये इंद्राग्नि सुतेषु वाम क्या है, थोड़ा मिटा हुआ है, सकार है या पकार है, स्तवत सुतेषु वाम स्तवत तेषु रिता वृधा। अब ये कह रहे हैं कि ये जोश वाकम वदत पज्र होशिणा न देवा भस्थश्चन। ये कह रहे हैं कि ये इंद्राग्नि, जो इंद्राग्नि जो दो देवता, ये इंद्राग्नि क्यों नहीं, अग्नि इंद्र क्यों नहीं है, पहले भी आई थी ये बात, इंद्राग्नि नित्य ही समास क्यों है, अग्नि अग्नि इंद्रा क्यों नहीं होती, अग्नि इंद्रा क्यों नहीं होता? ये आया था उत्तर कहाँ दिया था इसका? कौच ने तो ये इंद्राग्नि सुतेसु निचोड़े हुए सोमों में वास्तवत स्तुति के योग्य हैं। स्तुति वास्तवत नाम है, लेट लकार है, स्तोति तेसु ऋतावृधा, उनमें उनको क्या मिलेगा? ऋतावृधा। ये संबोधन होना चाहिए ऋता वृधा, संबोधन ही है क्योंकि हाँ हे ऋता वृधा इंद्राग्नि, हे ऋतु ऋतु को बढ़ाने वाले, या ऋत को क्या बोलते हैं, ऋतंच सत्यंचा भी, तो वही ऋत है यहाँ जो प्रजापति के तपस्या से पैदा हुआ था, तो उसको बढ़ाने वाले कौन है? वो इंद्राग्नि है। और सोम निचोड़ने के बाद में आपकी स्तुति की जाती है, क्योंकि उससे पहले तो करेंगे कैसे, खिलाना है तो निचोड़ने के बाद ही करेंगे। तो जोशवाकम वदत, जोशवाकम नाम है जुष्य प्रीति सेवन तदर्थम वाक है जोशवाक, अर्थात जोशितव्यम जो विज्ञापनीयम भवति, अर्थात ऐसी वाक जो जानकारी मन में बोल रहा है तो पता नहीं लग रहा, तो जोशवाकम वदते नाम है धीरे धीरे बोलते हुए का पज्रहोषिणा, पज्रहोषिणा नाम है, अभी तो उसी को तो खोल रहे हैं है? पज्र नाम है अत्यधिक, होशिणव नाम है आह्वान योग्य, तो अधिक आह्वान का योग्य कहाँ होते हैं, जहाँ यज्ञ होते हैं, तो अत्यधिक याग वाले देवा न अस्माकम कृते, जो देवता हैं भस्थश्चन, इसका क्या अर्थ है, ये बड़ा विचित्र शब्द है, न नहीं भस्थ, भस्थ नाम है भक्ष्यत, चन नाम है कदापि, तो देवता लोग ऐसे लोगों का भोजन कदापि जो जोशवाक है, जो धीरे धीरे आहुति देते हैं, इसलिए खूब जोर से बोल के आहुति देनी चाहिए, इसलिए देवता ज्यादा खाते हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप जो भी बोलो उसको जानो भी, क्योंकि जोशितव्यम, अब आपने ये तो कर लिया कि ओम आचमन कर लिया, पर ये आचमन क्या है, ये जोशितव्य है, जोशितव्य नाम है विज्ञापनी है, बताने के योग्य है कि ये कर क्यों रहे हो, इससे क्या मिलेगा, उसी की देवता आहुति खाते हैं, ये ध्यान देने की बात है, उसी की देवता आहुति खाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में बार बार आता है ये च उ एवं वेद है, जो इसके रहस्य को भी जानता है सैव वेद है, इसलिए ऋत्विक और यजमान दोनों क्या होने चाहिए, महाभाष्य क्या कहता है, आर्तजीना नाम है, अर्थात वो दोनों उसके विशेषज्ञ होने चाहिए, तभी यजमान भी है और तभी ऋत्विक भी है, दोनों ही नहीं जानते तो दोनों फिर क्या होगा, हाँ आगे चलें। तो इसलिए देवता लोग उसकी ही आहुति खाते हैं जो उसके रहस्य को भी जानता है, देवता लोग कैसे आहुति खाएंगे, केवल बाहर वाले थोड़ी अंदर भी हैं, अब अंदर उसके रहस्य को जानेंगे, आचमन में आपकी श्रद्धा पैदा होगी, नहीं तो बाहर समझ के आचमन को कर लेते हैं कि आचमन का रहस्य क्या है, उसी की आहुति खाएंगे, बाकी ज्यादा भूखे हों तो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ वो तो बोलने का तो है पर विज्ञापनीय प्रख्यापनीय, प्रख्यापनीय का आपको अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, आप 1000 किलोमीटर की स्पीड से बोलो अगर आप अर्थज्ञ है तो साथ में अर्थ भी चलता है, चलता नहीं चलता, वो कहना चाह रहे हैं कि उसको जानो भी। कृति कृति कृंतर यशो अन्न व कृति अकस्मात कृति छेदने, या तो ये यश है या अन्न है, और जब यश आता है तो छेदन कर देता है दोषों का, और जब अन आता है तो दुष्टता का यानी कमजोरी का छेदन कर देता है। महीकृति शरणा तेन्द्र, हे इंद्र संबोधन है, ते जो तेरी कृति जो अंतरिक्ष में व्याप्त जो यश है या जो अन्न है वो शरणा है। शरणा नाम है शरण के योग्य है, शरण है उसको हमें धारण करना चाहिए, घर है सारी चीजें है। सुमहत्य इंद्र शरणम अंतरिक्षे कृति वस्ती, जैसे कोई यश है या अन्य है ऐसे ही जो अंतरिक्ष में तेरी शरण है। अंतरिक्ष में कैसे शरण लेंगे इंद्र की, विद्युत की अंतरिक्ष में शरण लेंगे तो विद्युत क्या करेगी। अगर आपको भूमि से ऊपर उठना है तो क्या शरण लेनी चाहिए आपको, शरण कौन है, इंद्र है, और इंद्र कौन है वायु व इंद्र होगा। अंतरिक्ष अस्त कौन देवता है, या तो वायु है या इंद्र है, और दोनों का सम है इंद्र विद्युत है, दो देवता है वहां, वाकर्त विकल्प नहीं है, समुच्चय है इंद्रो व इंद्र और वायु दो देवता अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। अगर आपको अंतरिक्ष में रहना है तो उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, अपने घर में कैसे रहने देंगे। क्यों जी विक्रम जी, कोई आपके कमरे में रहने लगे तो बिना अनुमति के रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो वायु देखो, ये पूरा विज्ञान है, वायु की शरण आपको लेनी पड़ेगी। वायु की शरण लेने से पहले वायु को जानना पड़ेगा कि वो क्या है, उसकी शरण ले लिया तो आप अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे बिना किसी भी मान के, फिर वायु ही आपको गति कराएगी। क्यों गौतम जी, फिर न टिकट की जरूरत ना यात्रा की जरूरत, अपने यहां से बैठे अब विचार किया चलो अब वीजा की भी जरूरत नहीं, ये लोग विमान में जाएंगे दो दिन हम क्यों लगाएं, हम तो सीधे जाके सिंगापुर सम्मेलन में शामिल होंगे, फिर दूध वहां मिलेगा तो यहाँ दूध पीने आ जाएंगे, फिर कार्यक्रम में भाग ले लेंगे। पाठ भी बंद क्यों करें, क्योंकि सारे दिन तो कार्यक्रम नहीं होंगे तो पाठ भी यहीं आके पढ़ाएंगे फिर वहां भाग ले लेंगे। पकड़ कैसे लेंगे, हमारे पास गायब की सिद्धि भी तो होगी। और आगे चलो, इयम अपि इतरा कृत्य तस्मादेव सूत्रमयी, जो गुदड़ी होती है ना या वस्त्र आदि के जो होते हैं ये भी, उसको भी कृत्य बोलते हैं संस्कृत में, कि वो सूत्र से बनी होती है। उपमार्थेवा, तो गुदड़ी नहीं देखी क्या कभी, गुदड़ी कंथा, कंथाम वैसी दुर्बुद्धे गर्धवे नभी दुर्वहम। हाँ कंथा का तो उदाहरण भी सूत्र भी पानी ने बनाया हुआ प्रसिद्ध चीज है, कंथा का एक सूत्र है ना कौन सा है, हाँ पाणिनि को अलग से सूत्र में कंथा शब्द रखना पड़ा, इतना प्रसिद्ध था, तो वही है यहाँ गुदड़ी। आजकल जैसे फौजी लेके चलते हैं ना अपनी चीजें, वो गुदड़ी सी होती है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, बिस्तर भी लपेट आ जाता है उसमें, कपड़े भी आ जाते हैं, खाने पीने का सामान आ जाता है, उसका नाम कंथा है। आगे चलो, अव तत् धनवा पिनाक हस्त कृत्ति वास है इत्यपि निगमो भवति, दो बार आ चुका है, इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी। अब श्वघ्नी कित्वो भवति, अब कोई भी है दो बार आ चुका है, हाँ अब आप इतना भी नहीं ध्यान रखेंगे तो करो, दो बार व्याख्या हो चुकी है। क्यों जी चंद्रगुप्त जी, दो बार हो चुकी है ना इसकी व्याख्या, दूसरी बार अब कर लेना तो फिर। अच्छा अवतत धनवा, अवत अवततम नाम विस्तृतम व तनितम व सज्जितम व धनवा धनुयस्य स्वयं अवतत धनवा रुद्र, जो रामचंद्र के फोटो मिलेंगे कृष्ण जी के फोटो मिलेंगे तो कंधे पे मिलता है, किंतु जो ये है परशुराम और ये दोनों अवतत धनवा है, मतलब हमेशा तैयार रहते हैं, सोचना ना पड़े धनुष सीधा बाण मार देते हैं, यहां तो विचारना पड़ेगा निकालेंगे उससे पहले तो कार्य हो जाएगा। तो पिनाक हस्त, पिनाक हस्ते यस, और इसके धनुष का नाम क्या था शिव जी के, पिनाक, पिनाक हस्त अवतत धनवाई, दोनों इसी बात को कह रहे हैं। कृतिवासा, कृतिवासा इसका अर्थ है चमड़े वाला, जो चर्म का वास है जिसके, वो कृतिवासा है, चमड़े के वस्त्र पहनते हैं शिवजी महाराज। और ये क्या करता है, पूरा मंत्र पीछे कराया था, हाँ ये जो आप देते हो ना कौन सी आहुति, बलि वैश्व प्रायश्चित आहुति जिसको आप बोलते हैं वो प्रायश्चित आहुति नहीं, वो रुद्र की आहुति है। शत ब्राह्मण में ये मंत्र दिया हुआ है और वहाँ है घटाया हुआ, डर के मारे देते हैं। ये प्रायश्चित आहुति नहीं है, ये रुद्र देवता की आहुति है। शतपथ ब्राह्मण में कब दी थी, जब वो सोच रहे थे रुद्र से बचने के लिए उसके नाम की आहुति ना दे, तो इतनी गति है उसकी तुरंत ही आ गया, ये झोने से पहले ही थोड़ा सा बचा था कि लाओ मेरे लिए आहुति दो कि महाराज बताओ अभी दे देते हैं। तो बीच में इसलिए देनी पड़ती है, पूर्ण आहुति के बाद में होनी चाहिए पर बीच में इसलिए देनी पड़ती है कि तुरंत प्रतीक्षा नहीं मुझे, अवतत धनवा हूं। तो बीच में वो आहुति की कल्पना करनी पड़ी। शतपथ ब्राह्मण में से इतना आनंद आता है इससे भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ हेतु नहीं दे रहे, वहां अब सत्य क्यों बोले उसका एक हेतु है, आचमन ऐसे ही क्यों करे उसका एक हेतु है, पात्र यही क्यों रखे उसका एक हेतु है, यजमान को स्वर्ग नहीं मिला यज्ञ तो पूरा कर लिया उसका भी एक हेतु है। तो हेतु से बुद्धि का विकास होता है, और मंत्र के साथ में हेतु है, पूरे यजुर्वेद की व्याख्या है और ऋग्वेद के भी बहुत मंत्र आते हैं, इसलिए महर्षि दयानंद बार बार कहते हैं अयम मंत्र शतपते व्याख्या था, यजुर्वेद की व्याख्या, तो इसलिए वो इतना आनंद का विषय है। वैसे देव प्रकाश जी का हमने चला दिया अभी दोनों कात्यायन सूत्र वो भी, तो अब आगे देखें स्व घनी कित्वो भवति स्व पुनर आश्रितम भवति। स्व कौन है, धन का नाम है, पुनराश्रितम भवति अन्य पे आश्रित है, धन अपने आप नहीं रह सकता कहीं, क्यों जी धन कहीं अपने आप रह सकता है कि अपने आप जाके पैसा चला जाए कि मेरे को कुछ चाहिए, किसी के आश्रित है, धन हमेशा किसी के आश्रित रहता है। वही कह रहे हैं कित्वो भवति, ये ज्वारी को कहते हैं, और स्व को स्व क्यों कहते हैं कि पुनर आश्रितम भवति, ये जो ज्वारी के पासे हैं ये ज्वारी के आश्रित है और धन भी किसी के आश्रित है। अभी बता रहे हैं ना, कृतम न स्वघनी विचिनोति देव ने, तो कृतम न, जैसे ये कौन है कृतम, कृतम नाम है कार्यम, और कार्यम नाम है यदभूतम, अर्थात पासे फेंकने के बाद है ना, कृतम जैसे पासे फेंकने के बाद जो ज्वारी है वो क्या चाहता है, स्वघनी नाम है ज्वारी, कृतम पासे फेंकने के बाद देव ने क्रीड़ा में विचिनोती, जैसे ढूंढता है कि अब जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, ऐसे ही ये क्या करता है, ये कौन है दूसरा, तो वैसे ही विजयम चिनोती, वैसे ही ये विजय को चाहता है, कौन है वो, इंद्र है या कोई भी, असफलता कोई नहीं चाहता है, हीनोपमा है। कृतम ही स्वघनी विचनोती देव ने कित्व किम तव अस्तिति, कित्व को कित्व क्यों कहते हैं, पासों को, किम तव अस्ति तेरे हाथ में कौन से है, तेरे हाथ में कौन से है, ये पूछते तस्मात कित्व इति शब्द अनुकृति कृतवान वाशिर नाम का, और ये कृतवान क्या है, विजय हो जाए, विजय हो जाऊं, विजय को प्राप्त कर लूं, ऐसी अपने आप की अपने आप को आशीर्वाद देता है अपने आप ही आशीर्वाद लेता है। सममिति परिग्रहार्थियम सर्वनाम अनुदात्तम, ये कह रहे हैं ये परिग्रहार्थी है, परिग्रह वर्थो यस्य तत्र भव परिगार परिग्रहार्थी है, सर्वनाम है अनुदात है, सर्वनाम हो तो उदात होना चाहिए था पर ये अनुदात है, क्योंकि ये सारे नाम जो हैं वो उदात ही होते हैं। फिशो माँ वो बता रहे हैं, माँ न समस्य दुढ़ परिद्वेशो अंगति उर्मी न नावम आवधित, ये कह रहे हैं माँ न समस्य, समस्य माँ मम कीर्ते अस्माकम कीर्ते न दुर्ध्य, पहले भी आया था बताओ क्या निर्वचन किया था, पाप दियर दुर्ध्य, तो समस्य नाम है सर्वस्य, सर्वनाम का पर्यायवाची है सर्वनाम अनुदत्त है, तो समस्य नाम है सर्वस्य, दुर्ध्य नाम हाँ, पाप धिया पापी जो वर्तते है, और वो कैसा है? नावम न अस्माकम कृते, कहाँ चला गया, समस्य सर्वस्य दुढ़ दुर्धिय न अस्माकम कृते मत परिद्वेष सो अंगति, तो हमें आप द्वेष से पीड़ित ना करो। ये क्या बात होगी, द्वेष से क्यों पीड़ित कर रहे हैं? दूढ़ होना चाहिए, पहले भी आया था तो एक ही होगा, दूढ़ पाप दे दे रखा,
पीछे भी दिया माना सर्व से दूर दिया पाप दिया सर्व।
तो ये कहना ये चाह रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे सर्वस्य माँ हम नावम उर्मी ने नाम, इसका तभी खुलेगा जब इसका अन्वय कर लेते हैं। इसमें उपमा है उर्मी इव नावम अवधित, जैसे तरंगे नाव को नष्ट कर देती हैं। बात समझ में आ गई? उर्मी न, उर्मी न, उर्मी इव नावम यथा अवधित, जैसे तरंगे समुद्र में भयंकर तरंगे आ गई तो पानी के जहाज को भी छोटी मोटी नाकाओं। क्यों जी? ये कहते हैं कि कुछ था ही नहीं पहले, तो अब ये नाव शब्द बार बार आ रहा है, तरंगे आ रहा है, समुद्र की बात आ रही है, तो क्या इनसे भी ऋषि गए गुजरे थे क्या? मैं वही कह रहा हूं, तो क्या इनसे भी गए गुजरे थे? जब वो पढ़ रहे हैं, उस चीज को पढ़ा रहे हैं, तो विद्या चार प्रकार से आती है, तो क्या प्रयोग नहीं किया होगा? और महाभारत का इतिहास का उदाहरण, वो उलूपी को लेने कहां गया था अर्जुन, और सोमयाग जब हो रहा था, राष्ट्र याग, पूरे देश देशांतर से लोग कैसे आ गए थे? नौका नहीं थी तो, या उड़के उड़ने की शक्ति नहीं थी तो कैसे आए थे? और पूरे संसार के युद्ध में भाग लिया था तो समुद्र में डूब के आए थे क्या? तो मतलब ना, हम तो नहीं मानते। हाँ, ये तो रोज बदलते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जैसे नाव जो है तरंगे नाव को डुबो देती है, ऐसे ही पाप बुद्धि मनुष्य को डुबो देती है। ये कहना चाह रहे हैं, अब वही देख लीजिए, नीचे वाली पंक्ति पहले समझ में आ गई, अभी लगा लेते हैं। तथैव समस्य सर्वस्य मा मत न असमान दुढ़ परिद्वेषी अंगति, जैसे पापी व्यक्ति दुर्धिया वाला व्यक्ति सभी से द्वेष करता है, ऐसे ही आप हमसे द्वेष ना करें। एक बात, जैसे वो डूब जाता है ऐसे हम ना डूबे, वो बात, जैसे वो पापी व्यक्ति को आप डुबो देते हैं ऐसे आप हमें ना डूबें। ये तो ये तीसरी बात, अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। मां ने सर्वस्य दुर्धिय पाप दिए सर्वतो द्वेष से, जो सभी ओर से द्वेष करता है, अंगति जो पापी व्यक्ति है, उर्मी नावम अवधित जैसे तरंगे नाय को डुबो देती है, वो अपने आप को डुबो लेता है, ऐसे ही आप हमें ना डुबोएं। उर्मी के कस्मात उर्णोते नउ, देखो हमारे यहाँ ये भी निर्वचन है, अब इनसे पूछ लो कि ये तरंगों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जो समुद्र में तरंगे आती हैं? वेव्स। वेव्स कस्मात? तो उर्मी उर्णोते नउ, ये नाव को चारों ओर से घेर लेती है, इसलिए इसका नाम उर्मी, तभी डूबेगी नहीं, एक तरफ से आएगी, दूसरे के लिए फिर दूसरा शब्द है, जो डूबोने वाली तरंगे अलग हैं और दूसरी अलग है। देख लेना, बंद तो नहीं हो गया, और आगे देखें। और नौ प्रण, नौ कस्मात प्रणोतव्या भवती, उसको ले जाना पड़ता है, अपने आप नहीं जाती, इसलिए नव को नव क्यों कहते हैं? प्रकर्षण नोतव्य भवति, अच्छी प्रकार से ले जाने योग्य है। नम तेरवा या नम प्रहरत्व शब्देच, वो झुकके भी चलती है और उस पर प्रहरण भी करती है, वो कैसे करती है? नीचे मछली वछली आ गई तो कुछ लगाते हैं ना उससे बचने के लिए, वो प्रहर करती चलती है, प्रहार करती चलती है, इसलिए वो है। तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम है साथ, अब सम शब्द की चल रही है, मंत्र पूरा हो गया, ये अनुदात क्यों कहा? क्योंकि फिशोन्तोदात्त से होना चाहिए था, दृष्ट व्ययम तो भवति दृष्टेन वेति प्राप्नोति इति दृष्टं देखी जाती है इसलिए है। वेद में क्या है यहीं से निकला हुआ दृष्टा अनुविधियश्च छंदसि उसी का नाम दृष्ट व्यय है निरुक्त में। उतो समस्मिन न आशीषी मही नो वश। अब समस्मिन इसका रूप बना हुआ है किसका है? तो यहां सप्तमी में हो गया यदि ये निपात होता तो सप्तमी में इसलिए यहां उदात दिखा अनुदात दिखाई दे रहा है
सर्वस्मिन
ना? आप में सर्वस्मिन है समस्मिन है तो ये इसका अर्थ क्या हुआ उतो अपि समस्मिन चारों ओर से सभी अधिकारों में आशीषी मही हम आपसे आशीष चाहते हैं और न अस्माकम कृते हे वशो समस्मिन स्थानेषु अस्माकम कृते आशीषी मही अर्थात आशीष दो यह हम आशीष की कामना आपसे करते हैं आशीर्वाद हम सभी ओर से आपसे चाहते हैं। तो सप्तमी अर्थ में हो गया इति सप्तम्याम शिशीति दान कर्म तो ये दान मान लो या तो आशीर्वाद तो है तो सभी ओर से हम आपसे दान चाहते हैं। हे वशु संबोधन में है न अस्माकम कृते अपि समस्मिन सर्वेषु स्थानेषु आशीषी मई दानम देहि उरस्याणा नहीं उरस्य न ऐसा होना चाहिए था उरस्य न अस्माकम कृते उरस्य उरस्यति रक्षति कर्म है हमारी रक्षा करो किससे करो अघायत है समस्मात दोनों में पंचमी है समस्मात अघायत है न उरस्य सभी प्रकार के पापों से हमें बचाओ। इति पंचम्याम उरस्यति रक्षा कर्मा अथापि प्रथमा बहुवचने नभन्ताम अन्य के समय तो अन्य के समय नाम है संग्रह में नभन्ताम तो संग्राम का तो अर्थ कैसे घटेगा फिर चलो समय नामे सर्वे नभन्ताम नामे नश्यताम अन्य के फिर संग्राम में घटेगा नहीं घटेगा कैसे क्योंकि संग्राम का वाची है मंत्र तो पूरा अन्य के तो अन्य ये शत्रवः अपि अष्टिष्ठा सन्ति ते अपि नश्यताम वो भी भग जाए या मर जाए जो मार दे वो तो है। तो यहाँ प्रथमा के बहुवचन में हो गया कुटस्य चर्षणी दो शब्द एक मंत्र में ही है क्या ये आपके यहाँ अलग अलग दिया दोनों शब्द एक में ही है तो कुटस्य और चर्षणी ये दो शब्द हैं दोनों क्योंकि एक ही मंत्र में मिल रहे हैं तो कुटस्य नाम है कृतस्य और चर्षणी नाम है मनुष्य नाम में पढ़ा है क्या बोलो मनुष्य के नाम क्षितया कृष्ट चर्षणा तो चर्षणी अब पता लग गया आपको मनुष्य नाम में पढ़ा है तो चर्षणी नाम है और चर्षणी मनुष्य को क्यों कहते हैं कि चक्षणात चर्षणी क्योंकि वो देखता रहता है चीजों को विचारता भी रहता है। तो चर्षणी कुटस्य मनुष्यस्य यत् कृत कर्म वर्तते स पुरस्तात् आगच्छति कुछ ऐसा होगा आगे देखते हैं। हविषा जारो अपाम पिपरति हविषा इसका नर है ना तो नरव संबोधन में होगा हाँ ये बार बार आता है ना नरा हाँ तो हविषा जारा तृतीय होगी हविषा जो हवियों का जो जार है जार नाम है जरती इति सत हवियों को जो सुखाने वाला है अपाम पिपरती वो क्या करता है जलों को पिपरती तर्पयति पूरियति वा पपूरी और वो क्या है पुनर पुनर पुनाती थी पपूरी वो पालक भी है जलों का और नरा हे नरव अभी तो अन्वय करेंगे पहले एक एक शब्द का कर रहे हैं पिता कुटस्य चर्षणी और ये पिता भी है और कृतकर्म का ये रक्षक भी है दृष्टा भी है जानने वाला भी है चर्षणी के अर्थ सारे हैं। अब इसका अन्वय करते हैं तभी ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले अन्वय में जो संबोधन में उसको लीजिए कीजिए अन्वय देखे कौन करता है इसका अन्वय भाई इसके बाद कर्म देखो या तो नरऊ नरऊ पिपरती, पहले तो या तो दो प्रकार के अन्वय होते हैं, तो कर्म को पहले रख लो या कर्म की कल्पना बाद में करो, आएगा तो कर्म से वो पहले ही। तो पहले नरक नरक की क्रिया कौन सी है? अब कम पिपरती, क्योंकि सकर्मक क्रिया है, पिपरती तो सकर्मक क्रिया है, तो इसका कर्म क्या है? अपाम, तो ऐसे अन्वय हो जाता है फिर। हाँ जी, हाँ वो तो पपूरी तो जो विशेषण है तो उसके साथ में ही जाएगा। तो नरा पपूरी अपाम, हे नरऊ पपूरी नरऊ, आप क्यों कौन है? अपाम अथवा जारे, जारे का संबंध किसके साथ में है?
अपाम जारे,
अपाम के साथ में भी हो सकता है, उसके साथ में हो सकता है। तो अब यहाँ क्योंकि षष्ठी का संबंध जारे, तो एक जरण करने वाला, तो कस्य जारे, ये जी तो अपाम जा रहे हैं, तो कर्म को ही क्षीण करने वाला है। तो अर्थ क्या निकला? हे नरऊ अपाम जा रहा है, हे नरऊ पपूरी अपाम जा रहा है, और संबंध किसके सामने? कुटस्य चर्षनी, कृत कर्म के देखने वाले, आप क्या है? पिता। आप क्या है? पिता है। और पिता है तो क्या करें आप? आप हमारा क्या करें? रक्षा करें आप हमारी। हविशाम अपाम जरिता, हविश हवियों का और जलों का कमजोर करने वाला, पिपरती पपूरी, पुनर पुनर पुनाती थी पपूरी, और सह पपूरी किम करोती? पिपरती, पुनर पुनर पालियती, प्रीणाती निगम वा प्रीणाती निगम वा, या तो इसको प्रीचि संपर्क से मान लें, प्रिय नहीं प्रिय पालन पूर्ण हो, हाँ इन दोनों से किसी, पिता कृतस्य कर्मण है चायिता आदित्य, कृत कर्म को जानने वाला आदित्य है, कमाल है, आदित्य हमारे किए हुए कर्मों को जान रहा, तभी गर्मी सर्दी ज्यादा देता है ना, उन हमने उसने जान लिया कि इन्होंने बड़ा प्रदूषण फैलाया है, चलो वर्षा कम करनी है ना, तभी तो वर्षा कम करेगा या ज्यादा करेगा जब जानेगा, है चेतन ही जानता है केवल, अच्छा ये कंप्यूटर में पासवर्ड आप गलत दे देना, क्योंकि मैं तो पासवर्ड रखता ही नहीं हूं, इसलिए किसी जो भी पासवर्ड रखते हैं तो आप गलत पासवर्ड दे देना, है ना, तो वो फिर कंप्यूटर को खोल के दिखाना,
वो भी तो ज्ञान के बारे में,
तो आप भी, नहीं अब आप ये बता दिए वो मनुष्य, आप ये बताइए वो समझता है नहीं है, हमें केवल इतनी बात है, चेतन है चेतनता की बात है, वो समझता है नहीं है। अभी कभी 5-7 स्टार होटल में रुके हो तो आजकल वहां चाबी ताले कुछ भी नहीं, वो समाप्त हो गया वो जमाना, अब तो या तो फिर वो लगा दो, ये कर दो, या फिर जो चाबी है ना उसी में वो उसका सेंसर है, वो दरवाजे को ऐसे दिखा दो दरवाजा, मतलब इतना समझता है वो, तुरंत खुल जाता है। तो बात चेतन और चेतन की नहीं है, बात है उसको जान है या नहीं, यदि जान गुण चेतन का है तो उसको फिर वो कैसे आया, और चेतन भूल जाता है वो नहीं भूलता, इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ये जान है क्या, चेतन का गुण है इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, पर केवल चेतन का है उसमें संदेह। वो स्वामी रामदेव जी कभी एक बार गूगल हाउस बना था ना शायद, कि वो टेबल आ जाएगी, भोजन आ जाएगा, एक रिमोट से सारे काम अपने आप, और समय भर दो आपको नहीं करना, समय उसमें केवल भर दीजिए कि किस समय आपको क्या चाहिए, वो सामने आ, गूगल हाउस बोलते हैं आजकल उसको, और रोबोट देख लो मनुष्य भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं जो भी है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप केवल ये नहीं कह सकते, जान गुण चेतन का इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, पर ये क्या है पासवर्ड पर, ये तो प्रत्यक्ष है सबकी घटना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ज्ञान क्या है? ज्ञान के तीन क्षेत्र हैं, जा अवबोधने और जनी प्रादुर्भावे और जा जाने,
ये
चेतन क्या है? चेतयतीति सतः चिति संजाने, वो जान क्या, वही तो मैं बता रहा हूं, जाग जान क्या, जायते अवबुद्धते अनेन इति जानम, एक अर्थ है, यदि जान को आप भाव में लेंगे तब आपको समझ, मुझे तो समझ नहीं, मैं तो साधन मान रहा हूं उसको, जायते अवबुद्यते जानाति वा अनेनेति जानम। यदि आप उसको भाव में प्रत्यय मान लेंगे तब समस्या है, तब तो जानकर हमारा कभी जीवन में संबंध हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, तो ये हविष्य का जार हो गया। पिता कृतस्य कर्मण है चायिता आदित्य, ये कृत कर्म को जो चायरी पूजा निशमनी हो, जानने वाला है या पूजा करने वाला है वो आदित्य है, और वो कौन है सूर्य है। तो कृत कर्म को चायिता चायरी पूजा निशमनी, और चायिता किसका अर्थ किया इन्होंने, चर्षणी यानी दृष्टा। हाँ, तो वो आदित्य जो है कृत कर्म को जानने वाला है, और लोग इसलिए पाप जो है ना अंधेरे में करते हैं आदित्य से डरने के बाद, क्योंकि वो जान रहा है। आगे देखें, केपया कपूया भवंती, ये मंत्र बड़ा विशेष है, ध्यान रखना। ये किसको मारता है ईश्वर, किसको आशीर्वाद देता है? शंब इति वज्र नाम है, शंब क्या है वज्र का नाम है, शमयतेर्वा शांति पैदा कर देता है, होगी ना शांति सीमा पे
जी।
चल रही है अभी तो चल हो जाएगी,
40
मार दिए,
40 मारते
अभी तक 40 मारे रोज 40 के हिसाब से करते हैं, कुछ भी नहीं मरे
नहीं, और दिखाते नहीं, और 60 चौकियां ध्वस्त
करते, और हमारे कितने शहीद हुए हैं,
हमारे तो इसी बीच इस समय नहीं हुए।
बहुत अच्छा, इसका मतलब मोदी रूपी शेर आ गया है, जाग गया है। शातयतेर्वा अथवा क्या कर रहा है, शात्यति थी शत्रु, और ये शत्रु के रूप में नष्ट कर देता है, या तो ये समन कर देता है। बहुत से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो तो वज्र को देख के ही शांत हो जाते हैं, और कुछ पिटने के बाद शांत होते हैं, बुद्धिमान हुए पिटने से पहले शांत हो जाए, नहीं तो फिर ये क्या करता है शात अंग टूटने के बाद शांत हो। हाँ, अब यह है ना कि एक्सीडेंट 100 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाएंगे, चलाते रहेंगे बेचारे, एक दिन एक्सीडेंट हो गया है ना भाई, देख के सुन के ही कम चला लेते, अब शातयति कर्म हो गया है, अब चलाने के लायक भी नहीं बचे 50 की स्पीड में, तो पहले ही ध्यान रखना चाहिए। केपया कपूया भवंती कपूया मिति पुनाति कर्म कुत्सितम, केपया कौन है कपूया है, और कपूया नाम है पापिन है, कपूया मिति पुनाति कर्म कुत्सितम, कुत्सित कर्म को बार बार करता है उसी को पवित्र करता है, दुष्पूयम भवती या उसको कठिनता से पवित्र किया जाता है। कुत्सितम पुत्र पूयतुम क्या बनेगा, कुत्सित कुत्सित रूपेण पूयतुम थोड़े बनता है, पूयतुम योग्यम कपूयम। पृथक प्रायन प्रथमा देव होतयो अकृणवत सर्वस्यानि दुष्टरा न ये शेकु यज्ञा नावम आरुहम ईर्मेवते न विशंत के पर। बड़ा अच्छा मंत्र है कि ये जो पत्थर की नाव है इस पे बैठ के कौन डूबता है कौन पार चला जाता है, पावी तुम भी बन जाएगा, पूतम भी बन जाएगा, क्योंकि वो विकल्प से करता है। आगे चलें, तो इसमें अब ये एक पत्थर की नाव है, अश्वनवती रईवती, तो जो पत्थर की नाव ये संसार है कौन से लोग तो उस पर बैठ के तैर जाते हैं और कौन से अपना उसी में डूबते रहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हम सब लोग बैठ के जा रहे हैं बीच समुद्र में और उर्मी आ गई जो आज अभी मंत्र में आई थी, तो हम सब क्या करेंगे,
डूबना तो सबको है,
हाथ पकड़ के डूबेंगे, हाथ पकड़ के तो जल्दी डूब जाएंगे, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, आपका सामर्थ्य समुद्र में भयंकर हजारों किलोमीटर तक समुद्री है, आपका सामर्थ्य पार करने का। वीर सावरकर ने क्या किया था, अच्छा वही है, तो जो सामर्थ्य वाले हैं सीधी बात है, जो इसका सामर्थ्य है जिसने सत्व रजतम को जो रजस और तमस से जो पार हो गए हैं, क्योंकि मोक्ष किसका होता है चरक के अनुसार, मोक्ष रजस तमोभावात, रजस और तमस जिसके नष्ट हो गए हैं उन्हीं का मोक्ष होगा, और उसमें आहार व्यवहार जीवनचर्या अध्ययन सारे वो काम करते हैं, चरक का वचन है मोक्षो रजस तमोभावात, तो जिसका रजस और तमस नष्ट हो गया है वही संसार को पार कर सकते हैं, वही मंत्र कह रहा है। पृथक प्रायन प्रथमा देव हूतयो अकृणवत सरस्यानि दुष्टुरा, ये कह रहे हैं पृथक प्रायन अलग हो गए, पृथक भूत्वा प्रायन, पृथक प्रायन का क्या अर्थ है, पृथक भूत्वा प्रकर्षेण अयन, अयन नाम गतवंत है, कौन प्रथमा जो प्रथम स्थान में थे, प्रथम स्थान पे कौन आते हैं, देवहूतय, और जो देवों के द्वारा बुलाए गए थे, देवता किसको बुलाएंगे, देवई हूत देवहूत या देवान हुयते आवयती देवहूत, जिन्होंने देवताओं को अपने शरीर में बुला लिया था, अर्थात जो देवताओं के रूप में हो गए थे, वो तो इस संसार से पृथक प्रायण अलग होके, संसार से अलग होना नाम है प्रकृति से अलग हो जाना, तो इससे लोगों के मोक्ष में चले गए उस नाव पे बैठे हुए भी, क्योंकि संसार से ही मोक्ष हो गए, ध्यान देने की बात है, तो पत्थर की नाव में भी वो पार हो गए, और जो कमजोर थे मेरा तेरा अपना पराया इसी में लगे हुए थे, पत्थर की नाव में तो डूबे पर पत्थर ऊपर से उनके ऊपर रखा गया पत्थर की नाव में डूबने का अर्थ है कि पत्थर उनके ऊपर रखा जाएगा ताकि वो निकल के ना सके, हाँ तो वही मंत्र कह रहा है, तो पृथक प्रायण प्रथमा देवहूत, माता जी बहुत सुनिए इस विषय को सुन के मोक्ष में जाएंगे क्या और दुष्टरा, ये पत्थर की नाव कैसी है, दुष्टरा है, दुष्काठिन्य ने तरी तुम योग्य, तो ये कठिनता हर कोई इस पे बैठ भी नहीं सकता, बैठते तो सारे हैं पर तैर कोई इस पे नहीं सकता, क्योंकि पत्थर उठाने का वजह सामर्थ्य भी चाहिए, क्योंकि समुद्र में तक ले जा कैसे लेके उठाया के जाएगा उसको, अच्छा नहीं पहले तो नीचे से ले जाएगा, यहां से उठा के पत्थर समुद्र में थोड़ी है, आगे चले, तो ये क्या है, ये पत्थर की नाव है, ये दुस्तर है और सर्वस्यानी, और ये सर्वस्यानी है श्रवणीयानी, वो जिसने ऐसे काम किए जो बता सके, वो ही कौन है, दुस्तरा है, और वही कौन है, प्रायन है, वही कौन है, इससे पार चले गए हैं, और देवताओं को जिन्होंने खूब बुलाया था, अब भोजन के समय देवताओं को बुला रहे हैं, स्नान के समय देवताओं को बुला रहे हैं, सब जगह जो देवताओं को बुला रहे हैं वो ही जाएंगे पार। न ये सेकु यज्ञाम नावम आरुहम, किंतु बिचारे उस यज्ञ की नौका पे चढ़ने के समर्थ भी नहीं हो पाए, कौन, ईर्मयुते न्याविशंत के पाया, जो पापी लोग हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, वो उस पे चढ़ भी नहीं पाए, पकड़ना चाहोगा तो नाव ने धक्का दे दिया, क्योंकि नाव भी चेतन है कि हट दूर दूर दूर, तेरे कारण मेरा मैं भी अपवित्र होऊंगी दूर है, तो उसको चढ़ने भी नहीं दिया, तो ही रह गए पृथक प्रायण पृथक प्रथते, क्योंकि वो विस्तार को प्राप्त हो गए, पृथु विस्तार है, प्रथमा देव होता है, ये देवान आह्वयंत है, वो कौन संसार से अलग हो गए, जिन्होंने देवताओं को बुलाया था, अकुर्वत सर्वणियानी यशांसी, जिन्होंने ऐसे काम किए थे कि सुनाते हैं आज भी उनको, राम ने कैसे काम किए थे, आज तक सुनाते नहीं, हम कृष्ण का नाम लेते हैं सुबह जयकारा भी लगाते हैं, तो वही लोग इस नाव से पार हो सकते हैं, दूसरे तो इस नाव को छू भी नहीं सकते, छूने का प्रयास कर तो करंट लगेगा 100 वोल्ट से इससे ज्यादा का, हाँ, और प्रथमा देवहूत देवान आवयंत अकुर्वत सर्व्यांशी कर यशांसी दुर अनुकरणानि अन्य, दूसरों के जो अनुकरण है करेंगे तो जरूर, किंतु बड़ा कठिनता से उनका अनुकरण होगा, सामान्य नहीं है, ये अशक्नुवन यज्ञाम नावम आरोढ़ुम, ये अशक्नुवन जो समर्थ नहीं हो पाए, जैसे मनुजी देख लो, मनुजी की बात भी घट रही है, मनुजी किसको चढ़ाएंगे उस नाव में, जो बचा के उत्तर हिमालय, मनुजी कीड़े मकड़ों को थोड़े उसमें बैठा लेंगे, विद्वानों को बैठाएंगे, धार्मिक गृहस्थियों को बैठाएंगे, उनको कैसे, नाव में तो जगह कम है, मनुजी तो और जो कोई चढ़ेगा तो मनुजी कहेंगे अपने दो धक्का, काम तो ऐसे कि नहीं बचेगा, मर डूढ़ के गल के मर, यहाँ सड़के मर, मछली खाएंगे, कछुए खाएंगे, है ना, और आगे चलो, ये अशक्नुवन, ये खुद क्या कह रहे हैं, ये अशक्नुवन जो कौन को नहीं चढ़ाएंगे, मनुजी दूर दिया वालों को चढ़ाएंगे क्या, वो सबको धक्का देके खुद ही चलेगा उसको नाव को लेके, सबका भोजन खा जाएगा, वहां भोजन ही नहीं बचेगा तो कितने वर्षों में पानी उतरेगा नीचे, सारी सामग्री रखी दुष्ट को थोड़ी चढ़ाएंगे उसमें। तो वही कह रहे हैं ये अशक्नुवन यज्ञाम नावम आरोढ़ुम, जो समर्थ नहीं हो पाए, अतः ये न शक्नुवन यज्ञाम नावम आरोढ़ुम ईरमेव ते न विशंते, ये ईरमे इहेव ते न विशंते। तो कहां रह गए, समुद्र में ही रह गए। और समुद्र में कब तक रहेंगे, एक आधे घंटे पानी और चढ़ रहा है, कछुआ भी अपनी रक्षा के लिए आएगा, मगरमच्छ भी आएगा तो उसी को पकड़ेगा, वो सोचेगा ना ये मेरी रक्षा कर सकता है, भूखे प्यासे सब बह के आ रहे हैं दक्षिण समुद्र से, यहाँ तक समुद्र समुद्र हो गया। तो उस काल में तो मनुष्य को अच्छा भोजन मिलेगा, उनका मनुष्यों का भोजन जो है कुछ नहीं होगा, और उनका भोजन ही भोजन होगा, मछलियाँ खाएंगी ये खाएंगे, तो इनको यहीं रह जाएंगे, वो यहीं रह जाएंगे मतलब समुद्र में गिरेंगे। ऋणे है ते न विशंत, वो तो ऋण में ही रह गए, और ऋणम अधर अधमऋणम भवति अश्मिने लोके, वो तो ऋण उतारने में पड़े रहेंगे। इति वा ईरमे इति बहु बाहु नाम है समीर तिरव भवति, तो बाहु के बराबर ही रह गए हो, कुछ दिन में नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाहु क्या होती है लंबी होती है, तो समुद्र में लंबा लेट करेंगे, मरने के बाद फूल के वहीं लेटे रहते हैं। बाहु नाम है, बहु नाम है, मेरे में तो बाहु है, बाहु का ही नाम है ये ईर में जो है। तो जैसे बाहु लंबी होती है भाई, मरने के बाद समुद्र में क्या होगा, ऐसे तो लंबे लेटे रहेंगे, ऊपर तैरते रहेंगे। अर्थात जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, ये पूरा मोक्ष में जाने का मंत्र है। मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाने के लिए एक नौका है, वो नौका कौन है, यज्ञ है। जिन्होंने यज्ञ किया, सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, वेदाध्यनम यज्ञ, हाँ वेदाध्यनम तप, वेदाध्यनम ब्रह्म यज्ञ। इसकी तो इसलिए जरूरत है कि वेद का विज्ञान इसके बिना खुलता नहीं, तो ये भी तो अध्ययन के बिना इसको कैसे समझवाएंगे, सतपथ ब्राह्मण नहीं पढ़ा तो आचमन नहीं करेंगे आप, पानी का अंदर का आचमन नहीं करेंगे। हाँ हाँ ये अध्ययन, ये तो अध्ययन के बिना समझ में नहीं आता, नहीं तो बता दो आचमन क्यों करते हैं। तो ये देखो कितना सुंदर मनता कि एक नाव है वो यज्ञ है, उस पे प्रथमा प्रायण उससे पार चले गए स्वर्ग में यानी मोक्ष में, और दूसरे तो उस पे चढ़ ही नहीं पाए, और चढ़ना चाहे तो हमने नहीं चढ़ने दिया। मनु जी कैसे चढ़ने जाएंगे उस नौका में बताओ, विद्वानों की रक्षा करेंगे वो, कीड़े मकोड़ों को तो समुद्र में मछली खाएंगे। तो इसलिए अगर हमें इससे पार जाना है तो धार्मिकता पवित्रता विद्या अध्ययन के साथ साथ अति आवश्यक है। और ये आपको क्या लगता है कि वेद के पवित्र मंत्र बिना बुद्धि में पवित्रता के समझ में आ जाएंगे, मंत्र से पवित्रता जरूर मिलेगी किंतु पहले पवित्रता होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो सामान्य अर्थ आ जाएंगे, सामान्य अर्थ से तो कुछ समझ में आता नहीं। अगर इसके रहस्य को जानना है, त्रिविध जो अर्थ है इसके, वो बिना पवित्रता के नहीं आएंगे। और ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, आलस्य है, प्रमाद है, खाने पीने में उल्टी सीधी चीजों में बड़ी रुचि है, तो वेद समझ में आना संभव नहीं है, सामान्य नहीं समझ में आएगा। तो अपने अंदर पवित्रता पैदा करें और सारे मिलके चलते हैं, नौका में अकेला हम क्या करेंगे, आप सब भी चलो, हंसते बोलते हुए मोक्ष में पहुंचेंगे, क्योंकि नौका है तो अकेला व्यक्ति तो क्या करेगा नौका में, सारे मिलके चलते हैं। राग तो छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, अविद्या जाते ही क्या होता है, छोड़ना पड़ता है क्या कोई चीज, छूट जाती है अविद्या, जाएगी विद्या आएगी, ना राग बचेगा। राग को आप राग छोड़ना, राग छोड़ना ये भी एक राग है, राग छोड़ने में राग हो जाएगा। तो और अविद्या तभी नष्ट होती है जब वेदों का अध्ययन हो जाए, पक्की बात है। कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, अविद्या उससे पहले दूर नहीं हो सकती। और पदार्थों का तत्व ज्ञान किसका करना है, द्रव्य गुण कर्म, ये विद्या में नहीं आता, ये तकनीक में आता है, ध्यान देने की बात। एक बार आचार्य आशीष जी बोले कि आपको विमान चलाना नहीं आएगा, आपको ये नहीं आएगा, तो ये भी विद्या में कमी रह गई, तो आपका मोक्ष नहीं होगा, जैसे आप कहते हैं वेद पढ़ के, मगर तत्व ज्ञान से मोक्ष होगा, ये तत्व ज्ञान में नहीं आता, तकनीक विज्ञान में नहीं आती, तत्व ज्ञान में नहीं आती। जिस सिद्धांत पे ये काम करती है वो तत्व ज्ञान है, तकनीक बदलती रहती है। तो हमें विमान चला के सीखने की कोई जरूरत नहीं है, विमान जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको हम जान लें, वो है वायु। हाँ वही है। और वही है कि तकनीक तो अनित्य है और हमें जानना किसको है, नित्य को जानना है। और नित्य में भी किसको जानना है, जो नित्य हमारे अंदर है। सबसे बड़ी बात है जो हमारे अंदर है, क्योंकि धारणा के बिना ध्यान, तो ये अग्नि कहाँ है, आप कहाँ है, ये जानना है। इसका तत्व ज्ञान हो जाएगा, इसका तत्व ज्ञान होते इसका ये विराट रूप है। कृष्ण भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था ना, वो पौराणिक तो दूसरे रूप में ले जाते हैं, किंतु उसका क्या करेंगे, जो अथर्वेद का एक सूक्ति है उसका नाम ही विराट सूक्त है। उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या, अंत में वही है कि मैं ही हूँ, मतलब अदिति ही सब कुछ है, बाकी सारे इसके रूप हैं। तो वो कृष्ण भगवान का तो उस रूप में था, पर वो दूसरे रूप में ले लिया। तो ये विराट रूप कब होगा, जब आप उसके तत्व को जाने, फिर आपको सब जगह वो अग्नि यहाँ भी दिखेगी, वहां भी दिखेगी, द्विलोक में दिखेगी, शरीर में दिखेगी। इसी का नाम विराट है, इसी का नाम विकास है, इसी का नाम तत्व जाना। तत्व ज्ञान एक है, पदार्थ अनेक है, तो तत्व ज्ञान अनेक है। अग्नि किसी सिद्धांत पे काम करती है वो उसका तत्व ज्ञान है, आप जिस सिद्धांत पे काम करता है वो उसका तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान तो एक ही है, एक सही है, किंतु पदार्थ अनेक होने से तत्व ज्ञान भी अनेक प्रकार है। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सादर नमस्ते, धन्यवाद। अब कितना भी जल्दी कर लो, व्याख्या के बिना बात नहीं बनती। तो आज